దివ్యం సచి సుందరాయ తస్మై మహాప్రేమ రస ప్రదాయ చైతన్య చంద్రాయ నమో నమస్తే. భావరాధికా మాధురీ ఆస్వాదన సుఖ జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య జయ కలి ప్రగటే ప్రజరా మఖేశ్వరీం క్రియేశ్వరీం స్వధేశ్వరీం సురేశ్వరీం త్రివేద భారతీశ్వరీం ప్రమాణ శాసనేశ్వరీం రమేశ్వరీం క్షమేశ్వరీం ప్రమోదకాననేశ్వరీం వ్రజేశ్వరీం వ్రజాధిపే శ్రీరాధికే నమోస్తుతే. వ్రజేశ్వరీం వ్రజాధిపే శ్రీరాధికే నమోస్తుతే. శ్రీకృష్ణ రాధా వర గోకులేశ గోపాల గోవర్ధన తదేవ గోవింద దామో దరమ ధవేతి హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. హరే కృష్ణ తో ఆప్ సభీ గౌర్ ప్రేమ్ రస్ చాహ సే इस प्रेम यज्ञ में पधारे हैं, हृदय से स्वागत है, वंदन के साथ धन्यवाद है। जिस संसार में हम रहते हैं उसको श्रीमद् भागवत में कारागृह कहा है, जेल कहा है, और इस संसार में अंदर और बाहर दोनों तरफ हमारे शत्रु हैं। अंदर से भी काम क्रोध लोभ हमें कष्ट देते हैं, और बाहर से आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक, दूसरे जीवों के द्वारा भी मन से तन से बहुत कष्ट होता है। लेकिन श्री ब्रह्मा जी भागवत जी में कहते हैं, तावत कारागृहम गृहम, ये संसार तब तक कारागृह जेल है जब तक जीव कृष्ण का नहीं हो जाता। यावत कृष्ण नते जना, जब जीव भगवान के चरणों में समर्पित करता है अपने मन से अपने आत्मा को, तब भगवान उसको माया के चुंगुल से बंधन से मुक्त करते हैं। बस माधव की शरण लेनी है तो सरलता से माया से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कोई माधव की शरण लेता नहीं, सब माया की शरण में है। माया माया सब कहे माधव भजे न कोई, जो माधव की शरण ग्रहण करे तो माया चेरी होई, चेरी मतलब दासी। अगर भगवान श्री कृष्ण की शरण ली जाए तो भगवान की यह दुरत्य या माया से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और भगवान की शरण लेने का अर्थ है भगवान की कथा और उसके संकीर्तन की शरण लेना, उसके भक्तों की शरण लेना। तो हम सभी 7 दिनों से सभी वैष्णव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पावन लीलाओं के आश्रय में रामायण और भागवत का भी आस्वादन कर रहे हैं। आज अंतिम दिन है, बस देखते ही देखते 7 दिन निकल गया। वैसे कहते हैं कि सुख के दिन जल्दी चले जाते हैं, ऐसे दिन तो अपने हिसाब से ही जाते हैं, लेकिन सुख में हमें समय का पता नहीं रहता। श्री चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पर प्रकट हुए कृष्ण प्रेम भक्ति रस देने के लिए। बस ये 7 दिन का आयोजन उसका प्रयोजन था कि हम सब में कृष्ण प्रेम भक्ति रस धारा हृदय में प्रवाहित हो, हम सबका जीवन सुखमय मंगलमय बने। श्रील प्रभुपाद की कृपा से बस ऐसे आयोजन देश विदेश में छोटे बड़े रूप में होते रहते हैं, और इसमें जो भी तन से मन से धन से सहयोग देता है, उपस्थित होता है भगवान की कथा को भगवान समझकर आदर देते हुए। हो सकता है कल परसों महीने के बाद आप लोग भूल भी जाएंगे, लेकिन हमारे राधा दामोदर भूलते नहीं है। कोई व्यक्ति थोड़ी भी कुछ भी सेवा किया है, सत्संग में आया है, भगवान भूलते नहीं। और गीता के 2:40 में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भया। हे अर्जुन, किसी ने थोड़ा भी धर्म किया है तो बड़े बड़े विघ्नों से, कष्टों से, भय से मैं उसे मुक्त कर दूंगा। और वही कृष्ण करुणा करके जो यमुना के तट पर यमुना तीरा वनचारी वो कलयुग में जाह्नवी तट वने जगमन लोभा हो रहे हैं। ऐसे संत जगत का सत्य है कि गंगा जी ने कृष्ण से प्रार्थना की, सॉरी यमुना जी से, दोनों देवियां हैं, सखियां हैं, दिव्य है, कृष्ण से संबंध है। तो गंगा जी कहती है कि देखो सखी यमुना, तेरा कितना सौभाग्य है कि तेरे तट पर भगवान कृष्ण लीला करते हैं, मधुवन में गाय चराते हैं और तेरे दिव्य जल को होठ लगाकर पीते हैं। भागवत की टीकाओं में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण यमुना जल का पानी पीते थे तो किसी लोटा गिलास से नहीं, जैसे गाय पानी पीती है ना डायरेक्ट मुंह से, ऐसे ही भगवान उसी इसी तरह आकार में होकर या सोकर सीधा यमुना को पानी पीते, तो अपने अधरों का रस यमुना जी में मिश्रित हो जाता था। और कभी कभी पूरा स्नान करते थे और फिर बाहर निकलकर उसी के तट पर खेलते थे, भोजन होता था, गैया चरती थी, यहां तक कि सर्व उत्कृष्ट लीला रास लीला भी यमुना के तट पर हुई। तो गंगा जी कहती है कि यमुने तुम्हारा कितना सौभाग्य है कि भगवान का तुझे इतना रस प्रेम मिल रहा है। तो यमुना जी ने कहा, देवी गंगा तुम्हारा भी कोई कम सौभाग्य नहीं, क्योंकि तुम तो उस प्रभु के चरणों से साक्षात निकली हो, है ना। भागवत जी से आप जानते हो कि गंगा का डायरेक्ट संबंध भगवान के चरणों से है, भगवान श्री हरि के चरणों का साक्षात चरणामृत है भागीरथी गंगा। और शंकराचार्य ने कहा, गंगा जल लव कणिका न पीता, किसी ने एक बूंद भी गंगा जल पिया है तो क्रियते तस्य न यमे न चर्चा, यमराज उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। भज गोविंदम। तो सखी भाग्य तो तेरा है क्योंकि तू भगवान के चरणों से कनेक्ट संबंधित है। तो यमुना जी को गंगा जी कहती है कि अरे देवी ठीक है मेरा भगवान के चरणों से संबंध तो है, लेकिन वहां से फिर मैं भागती रहती हूँ, चरणों से निकली लेकिन चरणों में रहती नहीं, जाती हूं समुद्र की ओर ना। अब भगवान श्याम सुंदर से तुम्हारा मिलन हो, क्योंकि तुम तो अभी उसकी पटरानी भी बनोगी। भगवान श्री द्वारिकाधीश की 16108 रानियों में 8 मुख्य पटरानी है, जिसमें पांचवा स्थान कालिंदी का है। यमुना जी कालिंदी के रूप में, स्त्री के रूप में द्वारिकाधीश की सेवा में प्रकट महारानी बनी थी। तो तू उसकी भारिया, उसकी चतुर्थ प्रिया है ना। हमारे पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय वाले तो मानते हैं कि यमुना जी कृष्ण की प्रिया है, चतुर्थ प्रिया, और सत्य है ये। तो सखी अब तुम्हारे प्रियतम से तुम्हारा मिलन होना, तो दासी के विषय में जरूर जिक्र करना कि हमको भी कुछ सौभाग्य दे। यमुना जी ने कहा, देखो श्याम सुंदर, आज गंगा मिली थी, बोल रही थी कि आप उस पर भी थोड़ा कृपा अनुग्रह करिए ना। तो कृष्ण ने कहा, यमुना कह देना उस गंगा को कि मैं लीला तो यमुना के तट पर करता हूं, लेकिन उस लीला की जो कथा है ना वो गंगा के तट पर होगी, श्रीमद् भागवतम, क्योंकि वो भगवान की लीला में और उसकी कथा में कोई भेद नहीं। तो ये यमुना तीरा, यमुना के तट पर जो भी लीला हुई उसकी कथा कहां होगी? गंगा के तट पर, सुखदेव गोस्वामी शुक्रताल में, गंगा के पावन तट पर महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत रस सुधा पिलाए। अब हुआ क्या? गंगा जी के एकदम प्रत्यक्ष ऋषि साधु समाज में हरि कथा रस मिला, और क्या हुआ? वे ही कृष्ण की कथा गंगा ने जब सुनी तो इस कथा प्रेम रस के प्रभाव से वही कृष्ण कलयुग में किस तट पर लीला किए? गंगा के तट पर। अर्थात श्री कृष्ण राधा भाव और राधा कलर लेकर, राधा कृष्ण एक बनकर गंगा के तट पर प्रकट हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु गंगा जी में स्नान करते थे, गंगा के तट पर संकीर्तन होता था। इन लीला से हमें एक संदेश मिलता है कि जो भी व्यक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की गाथा को, कथा को सुनेगा, उसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सानिध्य प्राप्त होगा। परीक्षित को भी हुआ, चाहे गंगा को भी। इसलिए मनुष्य जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य कोई है सब कुछ छोड़कर करने लायक, तो वो कृष्ण कथा श्रवण है। और इसका प्रमाण परीक्षित है कि सब त्याग कर गंगा तट पर गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा जी को ये परम सौभाग्य दे रहे हैं, नवदीप मायापुर धाम में प्रकट हुए प्रभु और सुंदर लीलाएं करते हैं। कुछ बाल लीलाओं का आस्वादन दास ने 2 दिन पहले कराया था वैष्णव चरणों में। 1 से 5 वर्ष की आयु को कुमार अवस्था कहते हैं, जिसे हम बालपन कहते हैं। लेकिन 5 से 10 वर्ष की आयु को हमारा साहित्य शास्त्र पौगंड कहता है, पौगंड लीला। जैसे भगवान श्री कृष्ण की पौगंड लीला चालू होती है कालिय कालिय दमन से, कालिय के सर पर कृष्ण नाच किए तब वो 5 वर्ष के थे। ये दामोदर लीला हुई उस समय तो भगवान बाल लीला में थे, 3.5 वर्ष के। लेकिन 5 वर्ष के कृष्ण हुए तो उसको गाय चराने की परमिशन मिली वृंदावन में, दूर तक जाने की। ऐसे बच्चे को नहीं तो दूर नहीं जाया जाता, नजदीक बस। और छोटी बड़ी बड़ी गाय नहीं, छोटे छोटे बछड़े चराते थे। लेकिन कृष्ण को इच्छा थी कि यशोदा हमको, मैया हमको दूर तक बड़े बड़े वन में, मधुवन ताल वन में दूर तक जाकर बड़ी बड़ी गायों के साथ। और गाय भी चाहती थी कि गोविंद हमारे साथ आए। और उसके अलावा वृंदावन के पक्षी वृक्ष सब ऋषि मुनि हैं, सब चाहते थे कृष्ण का दर्शन, उसकी मधुर वेणु का स्वर श्रवण। तो भगवान गए जाते थे। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब 5 वर्ष के हुए तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने सोचा कि हमारा ये निमाई बड़ा नटखट है, लेकिन किसी भी बच्चे को बचपन में ही अगर विद्या शिक्षा न दी जाए तो उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। चाणक्य ने लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित। वो माता पिता शत्रु है जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं। क्यों? अगर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई? बोले न शोभनते, वो शोभा नहीं देगा। कहां शोभा, कहां शोभा नहीं देगा? बोले विद्वानों के समाज में हंसों मध्य बकाई, वो हंसों के बीच बगुला लगेगा। तो विद्या ही आभूषण है, पढ़ाना चाहिए। कौन सी विद्या? आज तो ये भी प्रश्न है। ये संसारिक भौतिक विद्या ही केवल बात नहीं है। भारत का इतिहास, ऋषि मुनियों की ये संस्कार संस्कृति भरे हुए वेद की विद्या की बात करता है। और वो विद्या पढ़ने से मुक्ति होगा। जो भी है, कलयुग है, बिगड़ चुका है सब। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के माता पिता ने सोचा कि निमाई को कुछ पढ़ाया जाए। गंगादास पंडित स्थाने पढ़िला व्याकरण। गंगादास पंडित नाम के एक शास्त्रज्ञ संस्कृत के विद्वान नवदीप में रहते थे और उसके चरणों में संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए इन निमाई गए। लेकिन स्वयं भगवान है, गीता में कहते बुद्धिम बुद्धि मताम अस्मि। अर्जुन, जितनी बुद्धि जित लोगों में है उस बुद्धि का स्रोत तो मैं हूं, मेरे से आता है। लेकिन प्रभु सीखने जा रहे, पढ़ने जा रहे, लीला कर रहे। श्रवण मात्र कंठ कैल सूत्रवृत्ति गण। वो गुरु गंगादास जो भी पढ़ाते थे श्रवण मात्रम, एक बार सुनते थे, कंठस्थ हृदयस्थ हो जाता है उसके अर्थ सार के साथ। दशरथ जी ने भी सोचा ना कि रघुनाथ को पढ़ाना चाहिए। गुरु गृह पढ़न गए चारु भाई। चारों भैया को वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में दशरथ जी ने भेजा था। लेकिन अल्पकाल विद्या सब आई, बहुत थोड़े समय में सारी विद्याओं के विशारद हो गए। क्यों? क्योंकि है ही विद्यापति। और कृष्ण ने भी 64 दिनों में गुरु सांदीपनि से 64 कलाओं को सीख लिया। भगवान तो विद्या लेने जाने के बहाने उस गुरु का गौरव बढ़ाने जाते हैं। कुछ शिष्य जीवन में ऐसे आते हैं जो गुरु का भी गौरव यश बढ़ा देते हैं। अल्पकाल में सारी विद्या आ गई। गोस्वामी ने बड़ा सुंदर गाया भक्तों, जाके श्वास सहज श्रुति चारी सो प्रभु पढ़ाया कौतुक भारी। अरे वेद श्वास, वेद जो ऋचाए है, उपनिषद जिनके श्वास से निकला है, उस प्रभु को पढ़ने की क्या जरूरत है? कृष्ण गीता के 15वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, वेदांत कृत वेद विदे मचाहम, अर्जुन वेद मैं बनाया, वेद मुझसे निकला है, और वेदों के द्वारा विषय जो जानने योग्य है अहम मैं हूं। मतलब मुझे जान लिया, सब जान लिया। यस्मिन विज्ञाते सर्व एवं विज्ञातम भवति, उपनिषद कहता है। कृष्ण को जान लेने पर सब कुछ जान। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पढ़ रहे हैं, क ऐसे करते ना, ए फॉर एप्पल, क कलम न क, पूरा विश्व के जितने वेद है वो जिनकी श्वास से निकलता है, अनायास श्वास लेने के लिए विचार नहीं करना पड़ता, श्वास अपने आप होता है। ऐसे ही वेद भगवान से अपने आप निकलते हैं। यजुर साम अथर्व ऋग आदि वेद अपना सौभाग्य मानते हुए मूर्तिमंत प्रकट होते हैं, और विश्व वही भगवान वेदों के मूल सार पढ़ रहे हैं, जैसे बिल्कुल बाल लीला कर रहे हैं। विद्यानगर में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु ने कलम, उस समय लकड़े की कलम होती थी ना, उसमें शाही में डाल के लिखना होता था, तो उस देखते ही देखते उस कलम को वहां बोया, उसी समय एक वृक्ष हो गया बड़ा विशाल। 7 वृक्ष हो गए थे, आज भी एक वृक्ष उसकी यादी में है। तो भगवान की ये मधुर लीला है। चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन कहा, एक दिन मातार पदे करीला प्रणाम, माता सची के चरणों में प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु ने। प्रभु कहे माता मोर देह एक दान, सुनो मैया मुझको एक एक वस्तु दोगी आप। प्रणाम करके एक एक दान मांगा निमाई ने, सची माता से कहा कि एक वस्तु मांगनी है मुझे। तो माँ तो इतनी प्रसन्न हो गई निमाई के उस मधुर वाणी को सुनकर, छोटे छोटे लाल होठ थे, और भगवान कह रहे कि एक 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 वरदान दोगी मुझे। माता बोले जई चाहो, तुम जो भी मांगो। माता बोले सही दिबो, जई तो मांगी बे, तुम जो भी मांगोगे सब दूंगी, बोलो क्या चाहते हो। प्रभु कहे एकादिशे अन्न न खाइबे, एक 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 वरदान देने का वादा किया मैया, अभी अभी तोड़ना नहीं। बोले नहीं, बोलो ना बेटा। बोले एक एक वरदान मैं ये चाहता हूं, दान चाहता हूं, वरदान नहीं दान, भिक्षा, कि आप एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। सची माता से निमाई कहते हैं कि आप एकादशी को कब है जानते हैं भक्तों एकादशी है? तो भगवान चैतन्य आप लोगों से दान मांग रहे हैं माता के बहाने, कि आप इतनी भिक्षा दे दो एकादशी के दिन, अन्न मतलब भूखे रहने को नहीं कहा, कुछ खा लेना, फ्रूट आदि दूध आदि अगर नहीं रह सकते तो। प्रभु कहे एकादशी अन्न न खाई। तो एक प्रश्न होता है, क्या सची माता खाती थी? चैतन्य महाप्रभु मांग रहे हैं तो हाँ, चैतन्य महाप्रभु इस प्रसंग से तो यही लगता है कि वो खाते थे अन्न, क्योंकि एकादशी के दिन निमाई ने देखा कि माँ अन्न खा रही है, तभी तो मांग रहा है। और इसको देख के अब जो सची बोलेगी उससे पक्का पता चलता है कि खाते होंगे। माता से मांग रहे, इसी को कहते पुत्र, जो अपने पिता माता को पवित्र कर दे। पुत्र का क्या लक्षण है भक्त, जानते संस्कृत में सन जो हम अंग्रेजी में कहते हैं लड़का, उसको पुत्र कहते हैं। उस पुत्र शब्द की परिभाषा क्या है, वेद में ये पुत्र शब्द क्यों बना जानते, पुत नामात नरका तारयति इति पुत्र। माता पिता अपने पाप के कारण अगर एक नरक है पुत नाम का, जिसमें बड़ा कष्ट पाते हैं, उसमें नहीं जाने दे और उस नरक से तार कर उद्वगमन करा दे, ऐसे कर्म करे पुण्य भक्ति के, तो उसको कहते पुत्र, नहीं तो म लग जाता है। रामायण की नहीं भागवत की बात हम कर रहे, रावण के लिए सुखदेव जी ने गंगा के तट पर बोल दिया कि ये पुत्र नहीं, सुखदेव बोल दिए हम नहीं बोलना चाहते, आप समझ गए, क्लियर बोल दिए, एक स्थान से आता है सीधा बोले सुखदेव, तो इसीलिए तो कहा गया। तो पुत्र का काम है प्रेम से कभी कभी इस बात को मांगना, क्योंकि माता पिता को गुरु जितने प्रिय नहीं होते, शायद उससे 10 गुना पुत्र प्रिय होते होंगे, राइट। गुरु तो ठीक है प्रणाम करने के लिए, 10-5 देने के लिए है कंठी बांधने के लिए, बाकी प्रेम किससे, सच बताओ। इतनी महिमा गुरु की सुनते हैं, वैष्णव की सुनते हैं, भगवान की सुनते हैं, लेकिन हमारी आसक्ति हमारा मोह किस में है, भगवान में गुरु में। एक दिन है गुरु पूर्णिमा को खाली, वो भी थोड़ा सा, वो भी अपने स्वार्थ के लिए, नहीं तो गुरु चले अपने धंधे। तो फिर यही उपाय है कि जिसमें मोह है वो कुछ बात कहे उसकी मानते हैं, माता पिता उसकी बात मानते हैं, बुरी बात भी मानते हैं। और हमारे इस्कान में कई प्रमाण है कि कई बच्चों ने अपने माता पिता के भारी भारी पाप विषय छुड़ा दिए, व्यसन छुड़ा दिए, कई बेटियों ने, कई पुत्रों ने असली काम किया। सेवा असली माता पिता की यही है कि किसी भी व्यक्ति की सच्ची सेवा यह है कि उसे धर्म में लगाया जाए, अधर्म से बचाया जाए, एनी हाउ कैसे भी। मानो निमाय पूरे विश्व को शिक्षा दे रहे हैं कि आप प्रेम से अपने परिवार का मंगल कर सकते हो, उसे धर्म के पथ पर लगाकर। इष्टम धर्मेण योजयेत, महाभारत में व्यास जी ने सूत्र दे दिया कि आप जिसको इष्ट मानते हो, मतलब अपना मानते हो, प्रेमी मानते हो, उसको धर्म में लगाओ, तो ही आप उसके असली प्रेमी, हितेशी, मित्र या बंधु हो। नहीं तो भले बाहर से ऐसे लग रहे हो लेकिन हो शत्रु का काम कर रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति कहे चलो आज जाते हैं बार में पीने के लिए, वो मित्र ही होता है, खुद एक सिगरेट निकाल के कहता है ले, ये भी मित्र ही होता है, लेकिन काम तो महाशत्रु का कर रहा है। देखने में तो मित्रता लगता है कि ले ले टुकड़ो, क्या पिएंगे, ऐसे संबंध से तो अच्छी बात बाहर से लग रही, लेकिन वास्तविकता क्या है, उसका शरीर खराब हो रहा है, उसका धन खराब हो रहा है, उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, और पूरे भारत मानव समाज में जो आदर्श बनना चाहिए वो कलंक बन रहा है, और इसको पृथ्वी पर गिरा गिरा के पृथ्वी को भी गंदी करेगा। काम तो अच्छा है नहीं एक भी दृष्टि से, और बाहर से लगता है कि यह मित्र है, तो मतलब मित्र जैसा रूप रंग है कार्य तो शत्रु से भी बढ़कर है। इसलिए मित्र कहे किसे कहा जाए, महाभारत रामायण के प्रसंग बहुत प्रेरणा देते हैं। राम जी से मित्रता कराई हनुमान जी ने सुग्रीव की, प्रसिद्ध प्रसंग है, कुपत निवारी सुपंथ चढ़ावा, कुपथ से मुक्त कराए और सुंदर पथ भक्ति पथ पर चढ़ाए, उसे मित्र कहते हैं। चलो भाई आज भगवत कथा हो रही है, अंतिम दिन है, चलो कथा में, ऐसा बोलता है ना वो सच्चा मित्र है। चलिए मंदिर में कृष्ण का दर्शन करके आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, ये असली मित्र है, क्योंकि हमें भगवान से जोड़ रहा है और यही हमारे साथ आएगा। और आप जा रहे हो बीच में मिल जाए कथा में जा रहे ना हूं जावा नो हेल हम गल हम जो ओला भवनो क्योंकि रिजल्ट तो यही होगा, उसका भाव वो नहीं है पण एने भान ही नथी, भाव भले वो न हो लेकिन कार्य तो पूरा बुरा है ना। इसलिए देखिए बड़ी सुंदर बातें हैं, निमाय पंडित ने कहा अपनी माता से, प्लीज मैया आप एकादशी को अन्न मत खाइए, और माता सची ने तुरंत कहा, सची कहे ना खाई बो भालो कहिला। अरे निमाय तूने बड़ा अच्छी बात बोला बेटा, आज के बाद जीवन में कभी अन्न एकादशी को नहीं खाऊंगी। आहा, इसे भी तो माता पिता कहते हैं। कुछ माता पिता तो उस मिट्टी के है कि बात मानेंगे ही नहीं। देखो आप परिवार में सुख चाहते हो, मंगल चाहते हो, इसलिए तो हम इतना इतना कर्म कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पसीना बह रहे हैं। क्यों? मंदिर बांधने के लिए नहीं, परिवार को सुख देने के लिए। आज जीवन में आप सब लोग अपने पर विचार करिए, भक्त लोगों की बात है, कर्मियों की बात छोड़ो। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, धंधा करते हैं, झूठ बोलते हैं, इधर उधर भागते हैं। क्यों? राधा दामोदर मंदिर बढ़ जाए, इसलिए भावनगर में मंदिर थे जाए, अटले मेहनत करो। नहीं, हमारा परिवार सुखी हो इसलिए कर रहे हैं। सही है कि गलत? सही है भाई। तो फिर आप अपने परिवार के लिए मंगल सुख आनंद चाहते हो, तो फिर आपके परिवार के मंगल सुख आनंद की जो बातें हैं उसको एक्सेप्ट करो ना। भले वो आपका छोटा लड़का बोल रहा हो, अगर वो इसमें आपका भला है, आपके परिवार का भला है, तो फिर वो छोटा भी बोले तो भी मानना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं हालतो था तारी करता वधारे दीवाड़ जो मड़ो मने सलाह दे ले। अगर वो अच्छी बात बोल रहे तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। हमारे हित के लिए, भले के लिए, सुख के है लिए तो बात स्वीकारनी चाहिए। फिर भले वो स्त्री बोल रही हो, भले वो छोटा बोल रहा हो, और भले वो व्यक्ति घर का वडील बड़ा हो, लेकिन बात शास्त्रों से विरुद्ध और परिवार का अहित हो, दुख हो, ऐसी बोलता हो तो क्या वो मानने लायक है? आप न्यूटन होकर सोचिए, न्यूटन वो वैज्ञानिक नहीं। मतलब कोई गियर में गाड़ी ना हो, अपने बुद्धि का आवेश मैं ये हूं ये हूं ये छोड़कर एकदम प्लेन माइंड से सोचिए कि सत्य क्या है। सत्य सिद्धांत यह है भक्तों कि कोई भी परिवार में निर्णय आवेश में आकर या दुराग्रह से नहीं लेना चाहिए। कभी कभी जो घर के बड़े लोग होते, बस मैं बोलू ऐसे ही सब करने चाहिए, एक उसको ये बस यही उसकी फिट है, उसको पता नहीं इससे वो दुखी होगा और सबको दुखी करेगा। और इसीलिए जितने परिवार में झगड़े होते हैं उसका एक ही रीजन, कोई किसी की बात मानता नहीं और सब अपनी बात मनवाना चाहते हैं। कोई मैं किसी का नहीं सुनूंगा, तुम मेरा सुनो। सास कहती है बहू तुम मेरा सुनो, बहू कहते तुम्हें बा मारू मानो, तो पुत्र कहता है पिता आप अभी आपको पता नहीं अभी जमाना फिर गया अभी मैं बोलू बैसा तो बाप कहता है अरे मैं सब किया हूं ये तुझे क्या मालूम ऐसा करो सब। बस ये झगड़ा ये कलयुग है। इसलिए देखिए स्वयं भी शुद्ध पवित्र आचरण करें। हाँ जमाने के साथ चल सकते हैं, छूट दी जा सकती है, उसकी भी अपनी एक मर्यादा होती है, लेकिन मूल सिद्धांत यह है कि जो हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छी बातें हैं, साधु संत और भगवान ने भी जिसको करने को कहा है उसको मानना, यही बुद्धिमानी। सची माता ने सीधा कहा बेटा बात तो बढ़िया बोल रहे हो, मानूंगी अब नहीं खाऊंगा। उल्टा ये बात तो तुम्हें बोलनी चाहिए अपने बच्चे को। लेकिन हमारे इस्कॉन से जुड़े हुए कई बच्चे कहते हैं अपने पिता से कि पिताजी मत करिए अभी ये सब, छोड़ दीजिए तमाकू, छोड़ दीजिए ये सब, नहीं मानते लोग। लेकिन वो जानते हैं इसका धन खराब हो रहा है, शरीर खराब हो रहा है, पाप है। भागवत में लिखा है व्यसन करना पाप है व्यास जी ने, फिर भी नहीं एक्सेप्ट करते। याद रखो आपके लिए पूरी दुनिया हो सकती है लेकिन आपके परिवार के लिए आप ही दुनिया हो। आप एक ही व्यक्ति, आपके आप पूरे परिवार के लिए, आपकी पत्नी के लिए आप ही दुनिया हो, आपके बच्चे के लिए आप ही दुनिया हो। तो मरने से पहले मत मर जाओ, व्यसन करके, क्रोध करके, दुखी होके। सही बात है कि गलत है बताओ? अच्छी बात है, स्वीकारनी चाहिए। भले बहू बोल रही हो लेकिन सास को मानना चाहिए कि हाँ बात तो हरी करे, हरे कृष्ण मंदिर में जन हरू की दूस। तू क्या बोलेगी भैया, तू क्यों सलाह देगी, मैं ये क्यों झगड़ा क्यों बढ़ाना बताओ। इतनी छोटी बात, सुंदर बात, स्वीकार करके सुख शांति होता है तो उसी को तो करना चाहिए। सची माता बड़े खुश से बोली, आज के बाद किसी एकादशी को मैं अन्न नहीं खाऊंगी। निमाय तालियां बजाने लगे, प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। और यहां पर उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में दास का यही निवेदन है कि एकादशी व्रत जरूर करिए। रामायण में महाराज दशरथ भी करते थे, राम ना बापा करता है तो तमे नो कई वाड़ी ना, विचारो तो खरा आखी दुनिया नो धनी छे ना बाप ने एकादशी करता हो तो तमे नो, अन भूख्यो नो रहेवाय तो काई नहीं, हवे तो केटलो हारू हारू, हवे तो एकादशी थी जलसो पड़ी जाए। हमारे वृंदावन में हूँ गयो तो एकादशी वाला गोविंदा भाई, प्रभु जी पिज्जा खाशो, मैं तो आज थोड़ा पिज्जा, एकादशी पिज्जा, मैं तो वाह एकादशी ढोसा, मैं तो हवे हाथा डावे तो वांधो नहीं, प्रॉब्लम कहाँ, कितना सुविधा हो गया बताओ। हाउ खाली एक भात नहीं था भाई एकादशी ना, आवश्य महीनामा बाकी लगभग बधु आवी गयो, हवे एक दाल भात आवी जाय एटले काम पते, रोटली दावी गई के दुनी। कितना सुखकर हो गया, मतलब ये कहने की बात है। और बड़ी अच्छी अच्छी खाने की वस्तुएं कृष्ण ने बनाई है रसमय, ड्राई फ्रूट है या फ्रूट है, शुद्ध सात्विक, कितने रस फ्रूट के बहते हैं, पीना चाहिए, कौन मना करता है, भूखे मरने को हम कहते भी नहीं। कितना शरीर में सामर्थ हो, मूल बात भजन है, फिर भी कुछ बातें शास्त्रों की मानने से हमारा मंगल है। चैतन्य महाप्रभु पावन मधुर लीलाएं, छोटी छोटी लीलाएं हैं लेकिन बता रहे हैं अपने चरित्र से। माता सची ने सोचा कि हमारा निमाय तो बड़ा हो रहा है और गंगा तट पे अब मैसेज भी मिलता है कि लड़कियों के पूजा के वस्तुओं को खाया जाता है, बड़ा हो गया है अभी, बड़ा मतलब कितना जानते हैं, पच्चीनो नहीं, उस समय उस जमाने में 14-15 साल मतलब माता पिता को लगता था कि घटो थी गया ना, कोई देशक नहीं, बोलो आटलो वे मत हो। बोले निमाय 16 वर्ष का होने जा रहा है, अभी उसकी शादी कर देनी चाहिए, और बड़ी सुंदर कन्या गंगा तट पर मैं जाती हूं तो देखती हूँ, वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी जिसका नाम था, और सुना है निमाय भी उसे कुछ पसंद करते हैं, लेकिन निमाय के लिए मांगे कैसे, क्योंकि लक्ष्मी ऐसे भी सुंदर है, बड़ा घराना है, लेकिन एक वनमाली घटक नाम के व्यक्ति जो पूर्व जन्म में विश्वामित्र के ही अंश थे, जैसे राम सीता का मिलन कराया था, वो सामने से पहुंच गए, सची माता एक रिश्ता आया है आपके निमाय के लिए। बोले क्या, वो लक्ष्मी नाम की कन्या है ना, कौन, वो वल्लभ भट्ट की। बोले हाँ, तो उसने भेजा है कि निमाय के साथ उसका पाणी ग्रहण कराया जाए। सची माता तो इतनी खुश हो गई क्योंकि वो अंदर से चाहती थी, और निमाय से कहा कि क्या किया जाए। निमाय पंडित ने कहा शुभ काम में देर क्यों करते हो, पुराने प्रेमी है, शक्ति शक्तिमान है, बड़ा सुंदर विवाह हुआ, महोत्सव हुआ, और लक्ष्मी निमाय पंडित के साथ सुखमय गृहस्थी बिताने लगी। और प्रभु जी क्या करते थे, अबे तो धंधे चढ़ूच पड़े ना, पढ़ लिए थे निमाय, पढ़ाते थे, पढ़ते पढ़, पढ़ाई एक ऐसी वस्तु है जीवन भर खत्म नहीं होती, और पढ़ते हुए भी पढ़ाया जा सकता है, ऐसे करते ना लोग, 12वीं 13वीं पढ़े वाले लोग 3-4वीं कक्षा को ट्यूशन देते हैं, चलता है खर्चा, स्वाभाविक है। तो निमाय पंडित गंगा के तट पर पांडित्य लीला करते थे, इतने विद्वान थे व्याकरण में, किसी भी व्यक्ति को सामने मिलते थे ना, उस समय नवद्वीप आज जैसे बनारस माना जाता है ना, विद्या का पीठ माना जाता है काशी, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है तो हम लोग गुजरात में बोलते हैं, बोले काशी थी भुणी नाई वोज के हूं, मतलब पता चलता है कि सब पंडिताई है, जो यूनिवर्सिटी है वो सब बनारस में है अभी वर्तमान 100 सालों का इतिहास। लेकिन 500 साल पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पर थे उस समय पूरे विश्व में, भारत नहीं पूरे विश्व में लोहा माना जाता था नवद्वीप बंगाल का, विद्या की पीठ माना जाता, बड़े बड़े एक से एक मूर्धन्य विद्वान वहां पर पढ़ते थे पढ़ाते थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु विद्या विलास ही तो करना चाहते थे। तो गंगा जी के पावन तट पर ओपन स्कूल होता था, कोई कमरा नहीं कुछ नहीं, गंगा जी की धारा बह रही है और बस कुछ बच्चे आ जाते थे उसको व्याकरण पढ़ाते थे, और व्याकरण खत्म होते ही कक्षा खत्म होते ही जब घर जाते थे रास्ते में लोग देते थे निमाई इस रास्ते से आता है तो सब पंडित दूसरा रास्ता लेते थे क्योंकि इनसे मिलना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि निमाई कुछ भी पूछते थे सामने वाला उत्तर ही नहीं दे पाता था, और वो सामने वाला कुछ उत्तर दे तो निमाई पंडित उसका खंडन कर दे, इतने पांडित्य प्रतिभा थी समृद्धि थी ना। अरे सरस्वती भी इनसे बुद्धि लेती है तो क्या कहना इसके, स्वामी है इनके। तो जो भी बोलते उसका उल्टा बोलते, फिर उल्टे का सीधा बोलते, और वो व्यक्ति फिर भाग जाता। तो फेमस हो चुके थे पूरे नवद्वीप में निमाई पंडित, मतलब सब डरते थे, नाम ही हो गया पंडित, पंडा बुद्धि जस्य सब पंडित, छेनी बिल्कुल पेनी बुद्धि चलती थी। अब हुआ क्या, उसी समय कृष्णदास कविराज लिखते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतवर्ष में, जानते ना यही एंड है ना, यहां से कश्मीर और कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी में पूरे भारत में जिसकी ख्याति हो चुकी थी केशव काश्मीरी की पंडिताय के कारण, और जहां भी जिस राज्य में जाए वहां के सारे पंडित और उस पंडितों के भी रक्षा करने वाले मतलब राजा उसका घरबार चलाने वाले सब नतमस्तक होते थे निमाई के चरणों में, सॉरी केशव काश्मीरी के चरणों में, और इसलिए इसको बड़ा गर्व आ गया था। तो उसने कहीं मैसेज मिला कि मैं पूरे भारत में सभी राज्यों के राजाओं को पंडितों को हरा चुका हूं, अब एक स्थान बाकी है नवद्वीप, नवद्वीप में जाऊंगा और वहां से मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, सब पंडित कह दे कि हम आपके दास है आपकी शरण में है, तो फिर विश्व विजेता हो जाऊंगा। और केशव काश्मीरी की खूबी यह थी कि उसने सरस्वती माता की इतनी सुंदर उपासना की थी कि भगवती सरस्वती प्रत्यक्ष उसके सामने आकर बात करती थी, जैसे हम लोग जैसे विद्या ताला सूर आदि सीखने वाले सरस्वती उपासना करते हैं, लेकिन वो मूर्ति की ना, प्रकट तो सरस्वती माता कभी दिखी नहीं, लेकिन केशव काश्मीरी को वरदान दी थी कि केशव तेरी बुद्धि तेरी समर्पण तेरी भक्ति से मैं इतनी प्रसन्न हूं कि मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि विश्व में कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। क्या आशीर्वाद देती हूं, पूरे विश्व में तुझे कोई नहीं हरा पाएगा, मेरा वरदान है तुझे। इसलिए केशव काश्मीरी बिंदास थे, बोले भगवती सरस्वती मेरे साथ है, दुनिया में किसकी मजाल के हमारे सामने टिक सके, और इसलिए जाता हूं नवद्वीप, अब लास्ट सर्टिफिकेट है, फाइनल एग्जाम दे दू, पास हो फिर खत्म बात, विनर। अब हुआ क्या, मैसेज, और ये लोग जाने से पहले मैसेज भेजते थे, उसके कुछ सेवक लोग जाके कहते थे आ रहे पंडित आ रहे, ये आ रहे राजा आ रहे पंडित आ रहे, ऐसे मैसेज चलता था उस समय गांव में। तो पूरे नवद्वीप में मैसेज छा गया कि केशव काश्मीरी आ रहा है नवद्वीप में, सब पंडित लोग अपनी पत्नी को कहते हेलो सूरत घर फेरो, और कोई बिजनेस नहीं, क्योंकि पंडित इधर आएगा केशव मतलब हमको हारना है तो इज्जत बचानी है तो निकलो यहां से, कई लोग खाली करने को घर भागो एक, और पूरे राजा भी बंगाल के राजा भी चिंता में आ गए कि हमारे राजा, क्योंकि पहले राजा लोग भी सब पंडितों की सभा को बुला के पंडिताई होती थी शास्त्रार्थ होता था, आज जैसे आज क्या करते हैं लोग, बड़े लोग छोटे लोग अपनी बुद्धि से अपने स्टैंडर्ड से सब करते हैं मौज के लिए खुशी के लिए, उस समय क्या होता था 500 वर्ष सबसे बड़ा स्पॉट सबसे बड़ा आकर्षित केंद्र रहता था सभा पंडितों का शास्त्रार्थ, जब दो पंडित मिलते थे पूरा ऑडियंस भरता था, जैसे आज क्या चल रहा है, आज क्रिकेट चल रहा है जैसे कि सब काम धाम बन के सब टीवी में या फिर उधर लाइव, ऐसे जहां भी पता चले शास्त्रार्थ हो रहा है तो सब काम छोड़ के सब लोग देखने आते थे क्या होता है। उस समय वही माना जाता था क्योंकि सब बुद्धिमान लोग थे ना। अब तो रस्व दीर्घाणु थे गयु, शब्द तो वही है बुद्धि पण जे रस्वा रस्वाई थी ना बुद्धि एन जगह हेठे। इसलिए ऐसी छोटे छोटे कामों में महानता लगती है, लेकिन उस समय ऐसा माना जाता। तो सब लोग डर गए, जहां भी पंडित लोग मिल रहे, पता है तुमको क्या केशव काश्मीर आ रहा है, तो क्या प्लान है, किधर जाओगे, बोले नहीं भावनगर, कोई गांव में, कोई इधर उधर भाग रहा है सब। और कुछ लोग बोले अरे इतना इधर कहां में ये है, कैसे करे क्या करे। राजा ने भी मैसेज बुलाया सब पंडितों को, बोले इतने दिन तक आप लोगों ने मारा टीपणा खाली किरा से लाडवा, लाज रखवा नहीं सर, मेरी लाज बचानी है, आप लोग सब तैयार करो, शास्त्र पढ़ो, आ रहा है पंडित। और केशव काश्मीरी कैसे निकलता था मालूम है, राज अंबाड़ी राजा जैसे निकलता है ना हाथी पर सज धज के, और हजारों लोग सैनिक उसके पीछे। वो सैनिक कौन थे मालूम है, सब प्रिंसिपल अलग अलग राज्य के, उसके पीछे चलते थे झंडा लेकर, और बैंड बाजा आगे चलता था, पूरा जुलूस निकलता था, प्रोफेशन जैसे निकलता है राजा की सरकार निकलती हो, आगे पीछे हमारी सरकार, उस शान से आता था। और उस समय जब वो ऊपर बैठा रहता था पंडित, तो गान बान मृदंग सब बजते रहते थे, तो सब लोग आके उसको प्रणाम दंडवत मारते थे रोड पर, तो ऐसे जुलूस निकलता था। और सब पंडित लोग कह रहे क्या करे क्या करे, तो किसी ने कहा टेंशन मत लो, अपने यहां निमाय पंडित है ना। बोले वो निमाय उसके सामने क्या चीज है, 16 साल का लड़का, और वो इतना अनुभवी, पूरे विश्व में मेडल लेके आया है विजयी बन के, और ये निमाय क्या करेगा। बोले काम करते हैं, हमारे पास बेस्ट आइडिया है, हम जब पंडित आएगा शास्त्र की बात बोलेगा तो हम कहेंगे ए तुमसे तुम्हारे तुमको तो हमारा गांव का एक बच्चा भी हरा देता है निमाय को आगे कर देने का। वो लोग कहेंगे, मानो वो लोगों ने पूछा कि उसने निमाय को हरा दिया, तो कहेंगे ए बच्चे को हराया उसमें क्या है, दोनों हाथ में, अगर बच्चा हरा देगा तो फिर तालियां बढ़ेगी, क्योंकि हमारा गांव का बच्चा भी तेरे को हरा देगा, और बच्चा हार जाए तो हेमा हूं क्या छोकरा ना हराया हेमा हूं, ये आइडिया हम लोग दे सकते हैं। इसलिए निमाय को आगे करो, जब भी आएगा टेंशन मतलब निमाय है ना बस। और ऐसे बातें चर्चा हो रही थी तब तक वो पहुंच गया, ड्यू तो तरत पाकी जाए भाई उग्राणी हीरा एक जमीन हार अपने केम थी गयो बे महीना तरह यहां वार लगे, काल थोड़ी हमारे हाथ में है, अब चर्चा हो रही है तब तो आ गया वो। और आ गया तो बड़ी शान से सब लोग स्वागत सत्कार के लिए खड़े है, और ऐलान करता गया कल सुबह का सूर्य उगेगा तो नवदीप में केशव कश्मीरी के साथ जिसको भी जो भी शास्त्रार्थ करना है उपस्थित हो जाए, और न उपस्थित होए तो अपना शरणागति लेटर लेके आए कि हमें तुम्हारा दास है। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं शास्त्रार्थ करना, शरणागत हो जाए तो ओके, और है तो आ जाओ। अब ऐसे ही पूरा दिन घूमा नवदीप में, जैसे चुटनी वाले बोलते ना माइक लेके, फलाना नापो फलाना ना माथू खाए अगाओ, तो पैसा देके रिक्शा भेज देते हैं लोग पूरा जुलूस उसके सर, सब चेले लोग घूम रहा है इधर उधर। अब उसी समय संध्या समय चंद्रमा उगा हुआ था बिल्कुल, 5:30 को सूर्य अस्त होते ही चंद्र उदित हो जाते हैं, और गांव में कहीं नदी तट पर समुद्र तट पर आप हो तब आपको ये दृश्य दिखेगा, आया तो रात ही मत देखा दो क्योंकि ये दृश्य पूरा अलग, कोई तारा कुछ नहीं दिखता इधर, लेकिन गांव में ये सुविधा है आज भी, क्योंकि वातावरण पवित्र होता है, पॉल्यूशन नहीं होता ना उतना। तो निमाय पंडित उस चंद्रमा की चांदनी में कुछ लेशन बाकी रह गया था अपने छात्रों को, तो पढ़ा रहे थे व्याकरण पढ़ा रहे थे, उसी समय ये पंडित जी निकले, उस समय हाथी बाती से उतर गए थे, अब नीचे कुछ लोगों के साथ बस निकले। तो इस पंडित ने भी सुना था, क्योंकि कोई भी पंडित आता है, जैसे कोई क्रिकेट मैच किसी देश में खेलने जाए तो तो उन लोगों को पहले से पता है कि कौन बॉलर फेमस है, इस टीम का कौन बेस्टमैन बेस्ट है, वो लोग को भी आइडिया तो होता है ना। सेम इसको भी आइडिया था कि यहां एक पंडित निमाय करके है, थोड़ा चमक रहा है, बच्चा है लेकिन फेमस तो है ऐसे। वो लोग केशव को भी नाम पता था, क्योंकि जो पवित्र होते हैं, विद्वान होते हैं, प्रसिद्ध तो हो ही जाते हैं, सीधी बात है। प्रशंसा तो उसकी चारों ओर होती है, और उसमें भी भक्त हो तब तो क्या कहना। दाबी दूबी न रहे कस्तूरी की बास। कस्तूरी को आप कितना भी पैक कर दो लेकिन उसकी सुगंध थोड़ी छोड़ेगी, वो तो बंद होने पर भी सुगंध तो निकलेगा ही निकलेगा। तो निमाय पंडित तो पवित्र प्रसिद्ध भगवान है, क्या कहना उसके विषय में। तो ये भी केशव बोला, तब किसी जहां निकला तो किसी ने कहा ये जो है ना वो निमाय है, वो निमाय। तो केशव काश्मीरी गए, वहां चैतन्य महाप्रभु पढ़ा रहे थे शास्त्र, वो कुछ चलते हुए वहां खड़े रहे ताकि सुनने की ये क्या पढ़ा रहे, क्या बोल रहे। अब चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि केशव काश्मीरी है तो पढ़ाना बंद कर दिया, बच्चों को कहा सुनो सुनो, जिस महान विद्वान कवि की हम प्रशंसा सुनते हैं ना, ये प्रभु जी वही है। और सभी ने छात्रों से साथ निमाय ने उसको प्रणाम किया, पधारिए नवदीप में है केशव काश्मीरी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बड़े मधुर शब्दों में बोला चैतन्य महाप्रभु जी। तब उसने कहा अच्छा आप निमाय पंडित हो ना जो व्याकरण पढ़ाते हो। हाँ मैं वही निमाय जो व्याकरण पढ़ाता हूँ। हाँ अच्छा चलाते हो छोटा मोटा, क्योंकि उसको बड़ा पावर था, जैसे कोई बड़ा बिजनेस करता हो जमीन का हीरा का, और वो मोची के पास जाए जोड़ा सी वो मतलब एने देखाड़ो एने थोड़ा हो ना, ये बड़ा अलंकार बड़ी बड़ी ऊंचे अलग शास्त्र पढ़ाता था। व्याकरण तो ABCD है, व्याकरण मतलब बेसिक ज्ञान पहले का। तो बोले हाँ व्याकरण पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चे को, मैं अभी सुना आप लोगों को, अच्छा पढ़ाते हो पढ़ाते रहो। तो निमाय पंडित क्या बोले जानते हैं? निमाय पंडित ने कहा कहाँ तुम्हें सर्व शास्त्रेर प्रवीण। हे कविराज कहाँ सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत विद्वान आप, कहाँ आमी शिशु और कहाँ मेरे जैसा छोटा बालक। पढ़ी ल नवीन, मैं तो अभी नया नया व्याकरण पढ़ता हूं। नवीन नवीन मतलब अभी बेसिक ज्ञान। यहां किसी का नाम है नवीन? नवीन नाम छे कोई नो नदी? ओके नो वही तो कहो नकर मार से मन। એટલે આપણે ગુજરાતીમાં માણસો મને આપણે એમ જ કહે નવીનમાં શું છે, ઓલો કે નવીનમાં કાંઈ લેવાનું નથી એમ, એટલે ઘરવાળાનું સમજવું આપણે ગમે ત્યારે નવીનમાં શું હાલે, નવીનમાં શું છે, તો એ ઘરવાળાને કોઈ કે બેન પડે પછી નવીનમાં શું કે નવીનમાં કાંઈ નથી। એવું થઈ જાય ક્યારેક આમી શિશુ, મેં તો બચ્ચા હું, છોટી છોટી બાતે પડતા પડાતા હું બસ। લેકિન હમારા ભાગ્ય હૈ કે આપકે ચરણ હમારે રાજ્ય મેં પડે। તોમાર કવિત્વ કિછુ સુનીતે હય મન। મેરે મન મેં હો રહા હૈ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ને કહા कि आप कुछ कुछ कविता सुनाओ ना, हमारा भाग्य है कि आप जैसे कवि हमारे राज्य में और सामने आ गए। तो तुम्हार कवित्व सुनीते हो या मन, कृपा करी कह। तो वो तो गर्व में थे, बोले क्या सुनाऊं, बोलो क्या सुनना चाहते हो। कृपा करी कर गंगा र वर्णन, क्योंकि बाजू में गंगा नदी बह रही थी। बोले काम करो ना गंगा जी के विषय में कुछ सुनाओ। सुनिया ब्राह्मण गर्वे वर्णन करील। अब तो एकदम आवेश में वर्ण में आ गया, गर्व से भरे थे। देखो भक्तों कुछ लीला बड़ी सुंदर है लेकिन इसमें बड़ा सुंदर मैसेज है। संसार में बहुत वस्तुओं का अभिमान होता है और अभिमान हमें विनाश की ओर ले जाता है। जैसे कोई रूप सुंदर हो तो उसे एक अभिमान होता है कि मैं सुंदर हूं। जैसे कोई धनवान हो पैसे वाला तो उसे अपने धन का अभिमान होता है और उम्र का भी एक अभिमान होता है। हूं हुकम बीजा नु हमड़ू भाई पूछो। लेकिन ये जितने भी रूप के, पद के, धन के अभिमान है ना, उसमें सबसे बढ़कर एक अभिमान है ज्ञान का अभिमान, विद्वता का अभिमान। लेकिन अभिमान सारे सद्गुणों को खा जाता है। एक दोहे में कहा गया है, मोह गयो तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। तिमिर मतलब डार्कनेस, अंधेरा, रवि मतलब सूर्य उगते ही अंधेरा चला जाता है। और हमारे जीवन में मोह है, अज्ञान है, मोह गयो गुरु ज्ञान, गुरु मिले जीवन में सच्चे तो हमारा मोह अज्ञान भी चला जाता। लेकिन कियो करायो सब, सब चला जाता है जिस दिन क्या है, अभिमान आता। इसलिए हम लोग बहुत छोटे जब पढ़ते थे, एक सुविचार लगता अपने बता, विद्या विनय थी शोभे, राइट, हाँ लय कूदते हो, विनय आए वो नहीं, क्योंकि ज्ञान तो भारत की दीवारों में ट्रक के पीछे भी मिलता है, लेकिन मनुष्य में ही नहीं मिलता। बस दीवार पे सब लिखा रहता है, बड़े बड़ी बातें लिखी रहती है, लेकिन जीवन में जीरो। अगर है तब सुंदरता है। देखो विद्वान दोनों मिल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु और केशव काश्मीरी, पंडिताएं होने जा रही है, और ये गर्व में है, अभिमान विनाश की ओर ले जाता है। अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है, धन दिया है, रूप दिया है, ज्ञान दिया है, तो ये हमारे द्वारिकाधीश का प्रसाद मानिए और उसको प्रेम से आनंद में लाइए और सेवा में लगाइए, इसका अभिमान मत करिए। याद करिए आदि गुरु शंकराचार्य ने इस बात को अपने मोह मुद्गर स्तोत्र, ये गोविंदम, भज गोविंदम में ये भी गाया, मा कुरु यौवन धन गर्व हरति काल निमेश सर्व। अपने धन का या युवानी का गर्व मत करो, क्योंकि जिसने दिया है ना वो एक मिनट में छीन सकता है। अभी इंसर्ट निकलता नहीं फिर रहेगा नहीं, कमर झुक जाएगी। यौवन, अभी युवानी पे इतना तुम ये कर रहे हो, लेकिन कमर बैंड हो जाएगी ना, खड़ा भी नहीं हो पाओगे। डोशी मानवा छोकरा पूछ, हूं गोतो ये क्या बेटा, जुआ नहीं गोतो गए बा, કે આપણે વળ્યા જ નહીં ને તેમ વળી ગયા, જો ઝુકતા નહીં ભગવાન ફિર એસા ઝુકાયેંગે ના, ખડા નહીં હો પાયેગા। હમારે ભારતીય સાહિત્ય મે બડી બડી સુંદર બાતે લિખી હૈ કે જિસ વૃક્ષ પર ફલ લગતે હૈ ના વો ઝુક જાતા હૈ। અકડ તો મુર્દે કી પહેચાન હૈ, ઝુકતા વહી હૈ જો ઇન્સાન હૈ। गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, इसमें हमारी सुंदरता बढ़ती है, शोभा बढ़ती है, आशीर्वाद से तो हम और आगे बढ़ सकते हैं, और अभिमान करके जो है वो भी जाएगा, क्या मिलेगा बताओ। तो विद्वत्ता कुछ भी भगवान ने दिया हो, भगवान का प्रसाद मानिए, इसका अभिमान मत करिए और इसका सदुपयोग करिए, जहां जरूरत है वहां लगाइए और देंगे ईश्वर। ऐसा हुआ था, कई बार होता है, दो पंडित मिल रहा है, बोले गंगा जी के विषय में वर्णन करो महाराज, गर्व से करने लगा। आप भी कभी कुछ प्रवचन करो भक्तों, कथा करो, कीर्तन करो, कुछ संगीत, कुछ भी करो, प्रेम से और प्रभु सेवा के लिए, अभिमान के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई काम नहीं होना चाहिए। सेवा है ये हमारी, भगवान की प्रीति के लिए, तो ये भक्ति है। कभी कभी होता है दूसरों को गिराने के, दिखाने के लिए होता है प्रोग्राम, या फिर पूजा पद के लिए होता है प्रोग्राम, कलाकार लोग यही करते हैं। हम लोग कथाकार कलाकार नहीं है, हम वैष्णव है, ये हमारे प्रभु की प्रसन्नता के लिए गुरु आज्ञा में सेवा है, जिससे हम शुद्ध हो जाए, इस भाव से हमें करना है प्रचार, नहीं कि बस दुनिया को दिखाता फिरे। ये मैसेज है इसमें, तब भगवान और देंगे, खुश होंगे। करिए वर्णन, सुनिया, बस इतना सुनते ही गर्भदेव लगा वर्णन करने, एक घड़ी में 100 श्लोक गंगा के धड़ाधड़ बोलने लगे। सब छात्र जो निमाई के जो बच्चे थे पढ़ रहे थे और निमाई पंडित दोनों केशव कश्मीरी को देख रहे सब, और केशव कश्मीरी झंझावात तूफान आंधी की तरह बोल रहा है और संस्कृत के श्लोक हम लोग को देख भी नहीं बोल सकते, छंद व्याकरण की कमी के कारण। और वो और बोला नहीं बनाया, क्योंकि संस्कृत बनाना पड़ता है। श्लोक इतना विद्वान था, इतना सरस्वती की कृपा थी कि वो फटाफट बनाते जाता था और बोलता जाता था, बनाते जा बोलते जाता था, और एक सांस नहीं लेना, ऐसा नहीं कि रुकना, धड़ाधड़ झंझावात लिखा है। झंझावात मतलब जैसे आंधी पवन बहता है तो कैसे बहता है, ऐसे 100 श्लोक बोल दिया धड़ाधड़। 100 श्लोक बोलने के बाद जब रुके बोले और सुनाए, 100 पर रुका, 100 श्लोक संस्कृत के बड़े बड़े और गंगा के विषय में, दूसरे नहीं, ऐसा नहीं सब आरती भी गया है तुम्हारे नहीं, एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग रूप में और उसी समय और आंधी तूफान की तरह, और वो भी संस्कृत में। ये इसका कवित्व था, ये सरस्वती की कृपा थी उसके ऊपर। क्या श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक। शास्त्रार्थ हो रहा है, अभी दूसरे दिन सुबह होने वाला था लेकिन शाम को ही हो गया, निमाई मिल गए। तो ऐसा कई बार हमारे इतिहास में होता है, पंडित लोग मिलते हैं ना। आप लोगों ने नाम सुना है रामानुजाचार्य का, श्री संप्रदाय के आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजा, लक्ष्मण अंश थे। उसके गुरु का क्या नाम है, ऐसे बहुत सारे गुरु थे इसलिए क्या कहा जाए, पहले गोष्ठी पूर्ण थे जिसने वो मंत्र दिया, लेकिन श्री संप्रदाय का जो नेतृत्व है, प्रतिनिधित्व है, जो स्वीकार करके इतना पूरे भारत में मायावाद को साफ कर दिया और वैष्णव वाद को स्थापित किया पूरे भारत में रामानुजाचार्य ने, वो श्री संप्रदाय में, वो किसके द्वारा मिला कृपा, श्रीपाद यमुनाचार्य के द्वारा। यमुनाचार्य शायद आप लोग ग्रंथ पढ़ते हो, सच्चा सत्संग करते हो तो ये नाम सुने होंगे। उन्होंने स्तोत्र रत्न लिखा है, आलवंदार स्तोत्र, जिसके कई सुंदर श्लोक प्रभुपाद कोट करते थे और हमारे चैतन्य चरितामृत में, भागवत जी में बहुत जगह है। तो रामानुजाचार्य के गुरु यमुनाचार्य, इन शॉर्ट इतना समझ लो। वो जब उसको नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि, और ईश्वर मुनि के पुत्र थे ये यमुनाचार्य, बड़े विद्वान थे, कवित्व में पास एकदम पारदर्शक विद्वान, शास्त्रों के पारदर्शी समझ लेना, अंदर की बात समझ लेना, जैसे कांच को हम कहते हैं ना अंदर दिखाता, ऐसे संस्कृत के श्लोकों के अंदर जाते थे और उसका मर्म सार स्वीकार करते थे। तो प्रसिद्ध थे, शुद्ध थे और आचार्य थे, श्री संप्रदाय के आचार्य वो थे। बाद में उसने रामानुजाचार्य को सौंपा ये सब। तो क्या हुआ उस समय साउथ इंडिया, वहां पर दक्षिण भारत में राजा पांड्य का शासन था, पांड्य नाम के राजा था, और वो भी बड़ा कवि प्रेमी था, कवियों को इकट्ठा करता था, ये बहुत होता है। राजा भोज भी ऐसा करते थे, अकबर के दरबार में भी गंग आदि नवरत्न पड़े रहते थे। पहले राजा लोग कवियों को रखते थे सलाह सूचन के लिए, जैसे आजकल के लोग मूर्खों को रखते हैं, काम बड़ा कराए रहे, कुछ अच्छी सलाह देने वाले राजा को चाहिए, शास्त्रों को जानने वाले। राजा भोज भी यही काम का, कालिदास उस भोज की कवि, भोज के कवि थे, कवि कालिदास, जिसने मेघदूत लिखा, जिसने रघुवंशम लिखा, रामायण नाटक। और चैतन्य महाप्रभु भी तो पसंद है, जयदेव कवि की कविता, चंडीदास। ओके, आपने थोड़ा गागो रहा बधु क्योंकि पढ़ना लिखना उसमें भी संस्कृत, उसमें भी अलंकार कौस्तुभ, वो सब बड़ी ऊंची बातें हैं, पर ये इतिहास सुनिए रस आएगा। यमुनाचार्य की प्रतिभा विद्वत्ता प्रसिद्ध हो गई, तो उस पांड्य देश के राजा के राज्य में महल में सभा में एक पंडित था कोलाहल, उसका नाम क्या था, कोलाहल, काम भी ऐसा ही था, कोलाहल एटले माथू चढ़ावे, शास्त्रों के सार श्लोक कोई उसकी टक्कर नहीं ले सकता। तो राजा पांड्य ने कहा कि कोलाहल को मैं अपने राजगुरु के रूप में, पंडित के रूप में तिलक करने जा रहा हूं, कोई है जो इसको नहीं मानता हो, और या तो फिर शास्त्र मैच हो जाए फाइनल नहीं तो फिर स्वीकार करो। तो किसी ने कहा कि यमुनाचार्य है आपके राज्य में और उसने संदेश भिजवाया है कि वो कोलाहल से पंडिताई करेंगे। अच्छा धन्यवाद, स्वागत है, क्योंकि पहले स्वागत भी होता था जो स्वीकार करे ऐसी कॉम्पिटिशन। अब बोले स्वागत है, कल राजमहल में आ जाए, कोलाहल बैठा होगा, सभा लगी होगी और पांड्य ने कहा पूरे विश्व से और भी लोग आएंगे और आइए यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य के लिए स्पेशल पालकी भेजा सैनिकों के लिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति है जिसने ये चैलेंज स्वीकार किया। और यमुनाचार्य आए तो राजा और रानी दोनों देखे, उस पालकी से तेज निकल रहा था, लाइट निकल रहा था। तो रानी ने कहा अरे भाई अंदर कौन महात्मा है पता नहीं, लेकिन ये प्रकाश कितना निकल रहा है, मतलब कोई तेजस्वी लगते हैं। तो थोड़ा नजदीक आए तो यमुनाचार्य का मुख देखा, युवान थे उस समय 16-17 साल के, और ये कोलाहल तो सीनियर सिटीजन हो चुका था पढ़ पढ़ के। तो राजा कहता है अरे ये छोटा सा बच्चा, क्योंकि वो भी देखा नहीं था, बोले यमुनाचार्य होंगे कोई गदिपति अधिपति आश्रम के महात्मा, लेकिन ये तो बच्चा है अभी। तो राजा कहता है अरे ये क्या करेगा हमारे कोलाहल के साथ, क्योंकि इनके जितने वर्ष है 16 इनके वर्ष है, उसमें जितने दिन होते हैं इतना तो ये शास्त्र पढ़ चुका है हमारा कोलाहल, और ये बोल रहा है कि करेगा। तो रानी ने क्या कहा मालूम है, रानी ने कहा देखो प्रभु जी राजा जी, पता नहीं मेरे अंदर से एक बात आ रही है, मारो आत्मा कहे कि ये जीतेगा। तो राजा कहता है तू भी आज क्या खाई थी, ये जीतेगा जिसकी उम्र देख तू और हमारा कोलाहल देख। बोले नहीं उम्र की बात छोड़ो, ये तेज बता रहा है कि ये जीतेगा। बोले चुप रहे नहीं जीतेगा, बोले जीतेगा, आए माथा गुड़ चालू थे वो लोग संवाद करे उसके पहले तो यहां हो गया बहुत है। बोले नहीं ये जीतेगा, बोले नहीं जीतेगा हमारा कोलाल जीतेगा। तो रानी ने कहा अगर जीत जाएगा तो राजा इतलो भाव माई के अर्धुरा जाना है, कारण कि पाको जो विश्वास ये हो नहीं सकता। बोले आधा राज में इस यमुनाचार्य को दे दूंगा मेरा, और हार गया तो रानी ने कहा हार गया ना तो मैं आपकी दासी बन के रहूंगी, मतलब अब तक क्या बन के रही थी वो आप समझ लीजिए। बोले मैं आप जीवन पर रानी नहीं रहूंगी, अब दासी बन के रहूंगी और आप जो बोलोगे करोगे, अगर ये जीत गया तो, अरे ये आपका पंडित जीत गया तो देखेंगे। चुप बोलो, बात तो हो गई दोनों की। और तब तक तो यमुनाचार्य भी पालकी पहुंच गए, अब दोनों को आसन दिया गया और पूरा दक्षिण भारत खचाखच भरा है विद्वान समाज से, क्या होगा क्या होगा। तो ये जो कोलाहल जी बोले ये छोटा बच्चा आप हमसे लड़ोगे, यमुनाचार्य ने कहा हमें लड़ना नहीं है, महाराज का आदेश था कि कोई शास्त्र के ऊपर चर्चा करना चाहे तो आए, तो हमने सोचा कि कितने दिनों से शास्त्र पर कुछ सुने बोले नहीं, तो आपसे बोलने का सौभाग्य होगा हमारा। अच्छा तुम जो भी बोलना है बोलो बच्चे, वो कोलाहल कहता है कि तुम जो भी बोलना है बोलो, मैं उसका खंडन कर दूंगा, मतलब तुम्हारी बात को शास्त्रों से रॉन्ग गलत बता दूंगा, खंडन मतलब कैंसिल कर दूंगा प्रमाण के साथ, बोलो पहला शास्त्र यही होता है, खंडन मंडन होता है, कोई बात बोले उसको काट के अपना बोलना होता है। तो ये दूसरा प्रमाण देखे, रामायण में ही लिखा है, भागवत में ये लिखा है, उपनिषद में ऐसे काटना होता है शास्त्रों में, जैसे ये क्षत्रिय लड़ते हैं ना अस्त्र शस्त्र से, ये ब्राह्मण लड़ते हैं शास्त्र से, कानो मात्र वधारे से लड़ाई होती थी। तो इसने कहा जो भी बोलूंगा खंडन कर दोगे, बोले बोलो, बोले एक नहीं मैं तीन बात बोलूंगा, एक का भी खंडन कर दिया ना तो मेरी हार। यमुनाचार्य ने कहा तू बोल रहा है कि जो भी बोलो खंडन कर, बोले एक नहीं तीन बात बोलूंगा, और आपने अगर उसको रॉन्ग कैंसिल कर दिया कि ये गलत है ऐसा बोला दिया तो मैं हार गया। अब ये भी चक है, बोले एक नो की दौरा तरण की क्या होगा। बोल तो पहला इसने कहा कि कोलाहल आपकी मां बांझ है, आपकी मां बांझ समझते ना गुजराती में, ओके जेने पुत्र नो था एन ओके हवा ना पाड़िए के आ ऊपर थी पीडोस, क्योंकि बांझ मतलब बांझनी तारी मां बांझनी छे आपड़े गुजराती में कहे, तो छोकरो छे आ ना कोलाहल तो एनो छोकरो, बोले तेरी मां बांझ है बत करो रॉन्ग बताओ। तो कोलाल नीचे देखता कि नहीं, मना तो नहीं कर पाएगा। दूसरा बात बोले, ये हमारे पांड्य राजा है ना, वो बिल्कुल सच्चे नीति और धर्म पर चलने वाले हैं। करो रॉन्ग,
बोलो वो जोड़ देख दे, दे।
और राजा सचमुच में धर्म नीति वाला था। अरे तीसरी तो सिक्सर सिद्धि। तीसरा बोला कि ये जो रानी है ना वो पतिव्रता है, अपने पति के अलावा किसी में प्रेम नहीं। ले क्या ले बिजारे से ले।
अब क्या बोलेगा ये बताओ।
बोले हमारी महारानी पतिव्रता नारी है, शुद्ध नारी है, और ये बोल नहीं सकते। राजा का तो इधर उधर आया तो तुमने खबर, बातन हाथी पाया बातन हाथी पाए। गंग के विषय में सुना है कवि? कवि गंग गा रहा था आगरा में, इतनी कविता अच्छी लगी तो बादशाह ने उसको कहा, गंग तुम पर इतना प्रसन्न हूं कि एक हाथी देता हूं भेंट में। तो पहले ऐसे लोग देते थे, आरे धारा घर ना ले जाए, दे प्रोग्राम करावे, माटी की बड़ा माथे पड़े हमने घनी बार, हासू मारा। बीक लागे लय न जाए हासू, देवानी वात तो पछी रही, आपड़ो प्रसाद करावे, बोलो प्रोग्राम पे। लेकिन पहले के राजा लोग कदर करते थे विद्वानों की, बुद्धिमानों की, तो बढ़िया से देते थे। बोले तुम यही करो ताकि तुमको कोई तकलीफ ना हो। तो गंग आप इतना सुंदर कविता करते हो, मैं अपना हाथी तुमको भेंट देता हूं। गंग ने कहा खाने का, वो भी मैं दूंगा, हाथी मारू घुटवट दे, गाड़ी ले दे, पेट्रोल कौन पूरा है। लेकिन क्या हुआ, इतना आनंद इतना प्रशंसा करे, तो गंग ने कहा कुछ कुछ और। दूसरे दिन आया, आप तो रोज कभी हाथी मिला, पूरे विश्व में फेमस हो, गांव में राज्य में। तो दूसरे दिन कहा, इस बार आज गंग है ना, आप मेरी मेरी रानी पर बेगम पर कुछ बोलिए। तो गंग बेगम को बोलने लगा, तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है, आंखें कमल जैसी है, काव्य हो रहा था उसमें कहा नाक छछुंदर जैसी है,
निकली क्यों
हच्चू, सच बात निकल गई। और उसकी नाक ऐसी थी छछुंदर, मैं भाड़ी पण केवू होय तमने खबर हशे, ઉંદરડા ટાઈપ નો આવે ને ટૂંકમાં, હે ને, બીજી વાત નો। બોલે અબ રાની કા મગજ, બેગમ કા મગજ ઓફ હો ગયા। બોલે ક્યા બોલા ક્યા બોલા, મેરી નાક છછુંદર જૈસી હે। ગંગ બોલે મેં એસા બોલા ક્યા, સબને સુના થા તો બોલા તો બોલા। તબ ઇસને કહા સુનો રાજા બાદશાહ, બોલે ક્યા, મેં આપકી બેગમ હું, કભી કુછ નહીં માંગી, આજ માંગતી હું, ઇસકો માર દો। राजा ने कह रहे बेचारा कवि है, मुंह से निकल गया, और तुम्हारी नाक ऐसी नहीं है, ये तो कवि ऐसी है क्या? बोले कवि तो कुछ बोल ही नहीं रहा, गंग मारा चुप, लेकिन बोल तो दिए थे। और गंग सच बोल, जो भी बोलते सच बोलते थे। कवि लोग पहले ऐसा नहीं कि झूठा मक्खन लगाते थे, सत्य सत्य वर्णन होता था। अब बोल दिया तो बेगम ने कहा सुना नहीं क्या, इसको आप अभी दंड दो, मार दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, हूं जहर पिन मर जा। अब क्या करे, राजा स्त्री हट थी और बेगम को चाहता था। मंत्रियों को कहा जो हाथी दिया ना उस हाथी के पैर के नीचे कुचल के मरवा दो। बोलो राजा वाजन अनुभरोसो करे। तब से पूरे हमारे भारत में विद्वान समाज में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, बातन हाथी पाईया, बातन हाथी पाई। एक बात बोलने से हाथी पाया और दूसरी बात थोड़ी उल्टी निकल गई, तो उस बात के कारण ही हाथी के पांव के, और गंग का इतिहास है कि उस सबके सामने राज्य में जो हाथी भेंट दिया था इनाम में, उसी हाथी के पांव के नीचे कुचलवा के मरवा दिया। इसलिए बोलने में हार्ड क्या न हो पर केटला ना भंगा भी ना क्या जीव। कवियों में ऐसा चलता। अब ये कोलाहल बेचारा चुप हो गया, रानी पतिव्रता नहीं है बोली जो है, भले हुआ ही नहीं तो बोला है क्या साहस। लेकिन ये भी बोला, अच्छा अभी तुम्हारी बारी खत्म, मतलब मैं हारा नहीं, लेकिन मैं भी तुमको 3 क्वेश्चन करूंगा, तुम उसको रॉन्ग बता के दो, तुम्हें भी खंडन करना पड़ेगा। अब कोलाहल, सारा शास्त्र ज्ञान बाजू में, उसने सोचा इसने जो पूछा ना वही पूछूंगा, ताकि इसको भी कैंसिल करना है, रॉन्ग करना है ना, जो भी बात बोले उसको खंडन करना है, काटना है। और नहीं काट पाए तो हार जाएंगे। तो अभी ये यही सेम पूछ रहे हैं कि क्या मेरी माँ वंध्या है, मेरी माँ वंध्या है, बोलो काटो अभी। बोले हाँ तेरी माँ बांझ है। अब छोकरा तो जो तो ही क्यों बांझता है, तो फड़ाक से श्लोक निकाला महाभारत में पितामह भीष्म बोले हैं कि जिसको एक पुत्र होता है वो बांझी माना जाता है, इसको काक बंध्या कहते हैं। से बोटो भाई तारे नानो भाई ताकि एक कसू वहां से पहला जा आई के महाभारत आल ले उम्मत। फिर भी ये खुश था, बोले अभी 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 दो बॉल और है, एवरेज भी बढ़िया है, कोई चिंता नहीं है। दूसरा सेम पुष्ट पूछूंगा कि हमारे राजा पूर्ण पाप शून्य और नीति निपुण है, करो खंडन। बोले नहीं पापी है। लो लेकिन कैसे? बोले लिखा गया है रामायण में कि प्रजा जितने पाप करती है उसका छठा भाग राजा को मिलता है, जितने पुण्य करती है छठा भाग राजा को, उसका अधिकार है। मतलब ऐसे वो पापी नहीं है, लेकिन शास्त्र से बात की जाए तो सब राजा पापी है, क्योंकि जिसके अंडर में वह है वो लोग जो भी पुण्य पाप करे उसका छठा भाग उसके खाते में जाता है, और श्लोक के साथ करे राजा हम खुश है जो नाम बरो बेकार की तो उन्हें पाप कर दो बोला कर। और भी एक बॉल है, सिक्स रन होने नहीं दूंगा, जोड़ो पेवोलियन होती टाइट फील्डिंग करो, जीतना है कैसे भी मैच। बोले हमारी रानी पतिव्रता है। बोले नहीं है रानी तो भी थी गई कि हूँ आना पक्ष बाती मने के नहीं पतिव्रता। कैसे नहीं है? क्योंकि पतिव्रता ओरिजिनली वास्तव में पतिव्रता थी, लेकिन शास्त्र की बात हो रही ना। बोले हमारे भारतीय शास्त्र में लिखा है कि राजा के शरीर में सभी देवताओं का वास है। ले बाबा जी का तोल लो। और सब खुश भी हुए, रानी भी खुश हुई, क्योंकि वो वास्तव में पर, लेकिन शास्त्र शास्त्र में बोलता है कि राजा के शरीर में राजा स्वरूप माना जाता है सारे देवताओं का, तो मतलब पतिव्रता नहीं है। क्या करे हार गया। अब रानी ने कहा हिप हिप दो दो आधा राज्य दियो लो। राजा ने ठेके डाटी वगैरह करे, राजा को लगा कि इस कोलाहल को पीटू मैं, क्योंकि ये कवि मेरा आधा राज्य भी। लेकिन खुश थे राजा कि हमारे हमारे राज्य में ऐसे ऐसे महात्मा ऐसे विद्वान भी है। बहुत ऐसा होता है। राजा भोज में क्या हुआ, राजा भोज की भी एक बात सुना दू। राजा भोज के राज्य में भी एक कवि आया, ऐसे ही कालिदास सब थे बड़े बड़े, तो एक कवि आया और उसने कहा कोई है मेरे साथ शास्त्र करने के लिए। और कालिदास उस समय बाहर गए थे, कालिदास नहीं थे राजा भोज के दरबार में, उसी समय बाहर से कोई कवि आया और सब दूसरे कवि बैठे थे। उसने बोला कोई है मेरे साथ शास्त्रार्थ करे ऐसा, तो सब कवि जानते थे कि ये केशव काश्मीरी जैसा मतलब फेमस कुछ तो गड़बड़ करेगा, कोई तैयार नहीं। तो बोले सिग्नेचर करो शरणागति का। तो राजा भोज खड़ा हुआ, जैसे जनक महाराज हमारे खड़े हुए थे रामायण, कोक तो भांगो कोई वीर नहीं है क्या, ऐसे ही भोज कहा कोई कवि नहीं है, केवल कालिदास नहीं है तो क्या हम बेकार हो गए। सब लोग सुन रहे लेकिन कौन बंगा जाते करें इज्जत तो कौन कर दे। बोले राजा जो भी बोलना दो लेकिन सर ऊंचा नहीं करना, नहीं तो ये तो हराएगा ही। तो सब जनता भी खड़ी थी, जनता में से एक डंडा लिया हुआ एक व्यक्ति गाय चराता हुआ भैंस चराता हुआ आया बाहर, मैं लड़ूंगा। है राजा बोल देख रहा है कौन है, कवि सब चुप, और ये फेमस कवि जिसके सामने कोई ऊंचा नहीं देख सकता, और उसके सामने वो गाय भैंस डंडा लिया हुआ कहता है मैं शास्त्रार्थ करूंगा आपसे। तो राजा और कवि लोग सोच रहे क्या करें अभी, क्योंकि सबके सामने ऐलान होता है तो देना पड़ता है। लेकिन कहा इसमें हमारी इज्जत क्या रहेगी, ये थोड़ी हार जाएगा, सेम वही प्लान। बोले हार जाएगा तो इसमें क्या, गवार को हरा दिया गाय भैंस वाले को, हम कवि लोग को थोड़ी हराया, और इससे बचने का ही क्या उसके उपाय लगा दो, टाइम पास हो जाएगा निकल जाएंगे, कल तो कालिदास आ जाएंगे फिर चिंता नहीं, सुबह कल तो इसको देख लेंगे। तो वो जो व्यक्ति था गाय भैंस चराने वाला डंडा लिया हुआ, उसने कहा मैं शास्त्रार्थ करने से पहले कविराज आप सबकी सभा में भोज के सामने जो हमें लड़ना है इस कवि से, मैं मौन शास्त्रार्थ करूंगा। बोलने से तो ये एक मिनट में हार जाएगा, मैं जब बोलूंगा ना वाह गाय नो दूध। बोले गाय का दूध पिया हूं और कितने को पिलाया हूं, मैं बोलूंगा तो एक मिनट नहीं रह पाएगा, मैं पहले मौन शास्त्रार्थ करूंगा, फिर इसमें जीत जाए कुछ आगे बढ़े तो देखेंगे, पहले 2020 खेलते, टेस्ट बाद में कर लेंगे। वो कभी भी दाग रहेगा कारण की ढीलो पड़ी जो आवी रीते हम से ना शुरुआत तो हम सारी धोवी जो है भले काय वहां है नवे राम 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 अमर घना प्रोग्राम में अंत है चले गोतवा पड़े मोड़ा लो पड़े। उसने कहा मौन शास्त्रार्थ होगा, वो भी कवि था उसने बोला देखते क्योंकि वो भी कुछ मौन काशी पढ़ा होगा, मौन मौन में भी कुछ शास्त्रार्थ होता है, मौन में तो इशारा से होता है ना, बोलते नहीं गुंगा ना हमारा हम बेड़ा मुंगा ना ओके तो हम जी सको तो मौन शास्त्रार्थ होता है। तो वो जो कवि था बोले चालू करिए मौन शास्त्रार्थ, अभी बंद सब चुप। वो पहला वाला कवि ऐसे किया तो आदेशी गोकल गाय नो दूध दिखे तो बोलो कवि जे हतो इके तीन तो बोलो के कोई समझ में नहीं रहा कुछ क्या हो रहा है, दोनों कवि समझ रहे तो बोलो के तो आ गाय नो दूध पीछे लो के बासी तो खींचो आप मुख को ते। तो वो कवि था ना वो सबके सामने कहते मैं हार गया मैं जाता हूं। बोलो मोहनबाज बोझ के नहीं रुको आए हमने मुंजारो था ऐसा हूं करू हो तब बे जो भी हार गया हो के लेकिन क्लियर करो ये सब क्या है। तो पहले कवि को पूछा कवि को इधर आ ये तूने पहला उंगली दिखाया फिर उसने मतलब क्या तुम लोगों ने शस्त्र किया हमको पता ही नहीं चला। तो बोले ये तो आपके राज्य में ये गाय चराने वाले दूध पीने वाले इतने बड़े बड़े विद्वान है घर। बोले क्या विद्वान? बोले हम लोग ने शास्त्रार्थ किया मैं हार गया इसके सामने। मतलब? बोले मैंने कहा भगवान एक है ब्रह्म एक है तो उसने कहा दो जीव और भगवान दो है तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तत्व की बात करता हूं तीन गुण है रजो गुण तमो गुण तीन है तो वो कहता है कि चार तीन गुणों से क्या है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मैंने सोचा कि पांच बातें बता पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि। वो बेचारा कवि था ना इसलिए ऐसे बोल रहा था। तो वो क्या बोलता है ओको बधु भगवान महामय जयता रू। अच्छा तो बोले वो गाय भैंस इधर आ गोकर्ण आया है दूध पी दिल आया है। बोले तू क्या बोला? बोले मेरे को क्या बोलो? वो बोला कि एक मतलब एक आंगली तोड़ दे मैं कि तू बे तोड़ी ना खींचता रही तो फिर वो मेरे को महाराज बताया कि तीन तोड़ दूंगा तो मैं बोला चार तोड़ दूंगा तेरी तो माड़ो मने पंजो देखा तो मैं कि तू मुठ्ठी भेगनो धूल चाट तो करी दे देशी खाद्य लूस। वो तो मरी गया मरेगा थोड़ी ऐसे ही चला गया। बोला आम जीती जो वो बोझ बड़ा खुश हुआ सत्य घटना है फेंक तो नहीं थी वो भाई तुमने तो पैसा जो आटलो खर्चो कर फेंको थोड़ा बैठा से आ रहा है। राजा भोज इतना आश्चर्य हो गया कि बाप रे और ये बेचारा गंवार था कुछ नहीं समझ रहा था लेकिन वो समझा कि बस ऐसे ही है पंडिताई चल रही है। तो ऐसे भारत की ये इतिहास है भक्तों हमारे सामने। पहले ये होता था केशव काश्मीरी और चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट पर है चलिए तापी से फिर उसी गंगा पर गंगायां महत्वय सततम मिथ्या भाति नीतरा यदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभग द्वितीयम श्री लक्ष्मी रिव सुरनर्य अर्च चरणा भवानी भर्तुर्या शिरसी विभति अद्भुत गुणा। वो जो 100 श्लोक झंझावात गंगा जी के विषय में बोला था चैतन्य महाप्रभु ने कहा बड़े सुंदर कवि हो 100 श्लोक बोल दिए संस्कृत में बोल दिए और आंधी तूफान की तरह बोल दिए लेकिन प्रभु एक प्रश्न है। बोले क्या? थोड़ा अर्थ भी तो समझाओ ना संस्कृत का। तो गर्व से बोला पंडित कौन से श्लोक का अर्थ सुनाऊं क्योंकि उसको लग रहा था मैं इतना फास्ट श्लोक बोला अत्यारू बोलो तुमने नहीं गयु अंदर अटलो धीरे थी राग में तो राइट के रॉन्ग अपनी एटली बुद्धि नहीं थी यार આપણે 10 વાર જોયા સાંભળે ત્યારે મન રિપીટ કરે કે તો એસે પાવર સે બોલા 100 શ્લોક સુને કોણ સે શ્લોક કા અર્થ સુનાઉં તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કહેવા 43 નંબર શ્લોક ઓર ઓ શ્લોક ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બોલે મહત્વમ ગંગાયા બોલા ચક્કર આવી ગયા કે માળા એને પકડ્યો કેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કહા જો 43 નંબર વાળા શ્લોક બોલે ને આપ 100 માંથી ગણ્યું હોય તેને બોલો એને મહત્વમ ગંગાયામ સતતમ નિતરામ વિભેતિ ગંગાજી કી ઇતની મહત્તા આપને બતાઈ ક્યાં મહત્તા બતાઈ બોલે શ્રી વિષ્ણુ ચરણ કમલે ઉત્પત્તિ ક્યુકિ કમલ જો હૈ વો પાની મે ગંગા મે ખિલતે હૈ લેકિન આપને સુંદર કવિતા કિયા કમલ સે ગંગા કો ઉત્પન્ન કિયા ગંગા મે કમલ ઉત્પન્ન હોતા હૈ ના લેકિન આપને તો રસ બસા દિયા વિષ્ણુ કે ચરણ કો ભી કમલ કહેતે હૈ પર ગંગાજી તો વિષ્ણુ ચરણો સે આઈ હૈ ઓર લક્ષ્મી ઇવ દૂસરી લક્ષ્મી હૈ યે ગંગા ક્યુકિ લક્ષ્મીજી કી જીતની ખ્યાતિ હૈ પવિત્ર ઉતની હી ગંગા હૈ ઓર સૂર નર સબ ઇસકી અર્ચના કરતે હૈ ઓર ઇસકી ગંગા કી મહિમા ક્યા કહે ભવાની ભર્તુ ભવાની પાર્વતી કા નામ હૈ ઓર ઉસકે ભર્તુ મતલબ ભગવાન શંકર શંકર ભગવાન ચંદ્રમૌલી ગંગાધર સર પર ગંગા ચડાતે હૈ ઇસસે જ્યાદા ક્યા કહે હમ ગંગા કે વિષય મે યે હો ગયા શ્લોક સંસ્કૃત યા હિન્દી ઓકે લેકિન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ને શ્લોક બોલા તો પંડિત બોલા ઇસકા અર્થ મેં બાદ મેં બતાઉંગા પહેલે યે બતાઓ તુમકો યાદ કેસે રહ ગયા ઓર તુમને કેસે પકડ લિયા તો મહાપ્રભુ ને કહા પ્રભુ કહે દેવવરે કેહો કવિવર કુછ લોગ ભગવાન દેવ કૃષ્ણ કી કૃપા સે કવિવર હો જાતે હૈ ઓર ઉસી કૃષ્ણ કી કૃપા સે કુછ મેરે જૈસે અચ્છે સુનને વાલે ભી હોતે હૈ સબ સોતે થોડી હૈ કોઈ બોલને વાલા અચ્છા હૈ તો કોઈ સુનને વાલા ભી અચ્છા હોતા હૈ કિસકી કૃપા સે કૃષ્ણ કી કૃપા સે લેકિન એક કામ કર એ શ્લોક તો હૈ ઇસકા થોડા અર્થ સમજાઈએ બોલે એ તો ક્લિયર અર્થ હૈ પંડિત ક્યા સમજના ઇસમે તો ઇસને કહા નહીં શ્લોક મે રસ હોતા હૈ અલંકાર હોતા હૈ વ્યાકરણ હોતા હૈ ઉપમાએ હોતી હૈ તો આપને ઇસમે કુછ ગુણ ઓર દોષ થોડા વ્યાખ્યા કરીએ તો હમે અચ્છા લગેગા સમજ મે આયેગા હમારે બચ્ચે ભી ખુશ હોંગે આપ ઇતને બડે કવિ હો તો ઉસને કહા એક મિનટ ક્યા બોલા હમારી કવિતા મે દોષ ગુણ બતા સકતા હું મેરી રચના મે દોષ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કા દોષ તો પ્રભુજી સબ કવિઓ કે કાલિદાસ કી કવિતા મે ભી થા આપ કિસ ખેત કી મૂલી દોષ તો સબ મે હૈ બોલે સબ મે હોંગે લેકિન મેરી કવિતા મે દોષ એક કામ કરો અભી તો તુમ અપને આપકો બડા પંડિત સમજતે હો ઓર મેરી કવિતા મે દોષ કોણ સા દોષ હૈ બતાઓ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કા એક નહીં પાંચ દોષ છે પાંચ હે અભી યે કે ઓ કવિ કો ચક્કર આ એક તો પહેલા શ્લોક પકડ લિયા દૂસરા બોલ દિયા ઉપર સે મુજે દોષ બતા રહા હૈ ઓર કહેતા એક નહીં પાંચ દોષ ઓર એક દોષ તો ઇતના બડા ખતરનાક હૈ કે પૂરે આપકે યે શ્લોક કો ઇસ કવિતા કો બેકાર કર દિયા કેસે બેકાર કર દિયા બોલે સુંદર સ્ત્રી ગહેનો સે સજી હો ઓર ઉસકો એક કોટ કા ડાગ હો તો સારી સુંદરતા બેકાર એસે હી એક બાત જો આપને ઇસમે બોલી વો તો સારે શ્લોક મે કોટ કે તુલ્ય બેકાર હો ગઈ આપ તો ઇસકો ચક્કર આને લગા કે યે ક્યા બોલ રહા હૈ પંડિત તો કેશવ ને કહા કોનસી બાત બોલે ભવાની શબ્દે ભવાની શબ્દ જો આપને ઇસમે ડાલા ઉસકા ક્યા અર્થ હૈ મહાદેવેર ગૃહિણી ભવ કી પત્ની ઉસે કહેતે ભવાની પાર્વતી રાઈટ લેકિન આપને કહા ભવાની ભર્તુ મતલબ પાર્વતી કે પતિ ભવાની કહેને સે હી પાર્વતી પતિ બોલતા તો વાં કોઈ ટેન્શન નહીં થા લેકિન આપને કહા ભવાની ભર્તુ મતલબ ભવાની કે પતિ ભવાની કહેને સે ઉસમે શિવ કા નામ આ ગયા લેકિન આપ કહેતે હો કે ભવાની ભર્તુ મતલબ પાર્વતી મતલબ શિવ પત્ની કે પતિ મતલબ કોઈ ઓર એક પતિ શિવ પત્ની કે પતિ મતલબ ક્યા શિવ પત્ની કહેને સે કામ હો ગયા ભવાની મતલબ શિવ પત્ની ઓર આપ કહે રહે શિવ પત્ની કે પતિ મતલબ ઇસમે એક દાગ હૈ કે ઉસકો દૂસરા પતિ હૈ એસા ઇસમે આશંકા જાગૃત હોતા હૈ ઓર યે આપને ઉસકે ચરિત્ર પર દાગ લગા દિયા જો સબસે સતી નારી હૈ આપ તો ઇસકો હોશ બેકાર બાત તો સહી થી એકદમ ટેન્શન મે આ ગયા કવિરાજ પૂરા બોલે એક છોટા સા લડકા ગંગા કે તટ પર હમારી હવા નિકાલ રહા હૈ અચ્છા હૈ કે લાઈવ નહીં હો રહા હૈ ઉસને કહા પંડિત સચ બતાઓ કેસે જાન લિયે તુમ યે બોલે મેને પહેલે હી બતાયા સરસ્વતી આપ પર પ્રસન્ન હૈ કૃપા કરતી હૈ તો એસે કિસી એક પર થોડી કરતી હૈ સબ પર કરતી હૈ લેકિન સુનિયે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દેખો વિદ્યા હૈ લેકિન વિનમ્રતા દેખીએ હમારે ગૌરાંગ કી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ને કહા શૈશવ ચાપલ્ય આમી જે કુછ કહીલા મેં અપની વ્યાકરણ ઓર બાલ બુદ્ધિ સે આપકે સામને થોડા બોલ દિયા લેકિન મેં એક સત્ય બાત બતાઉં તોમસમ કવિ ना ही त्रिभुवन ने, आपके जैसा कवि पूरे विश्व में नहीं है, और मैं तो आपका एक शिष्य हूं। देखो एक तो हरा दिए है, जेवी रीते राम जी माखण लगाड्यू परशुराम ने, कोने तोड़्यू गजता है वा? लखन तो थोड़ा उग्र थे उस समय, लेकिन राम जी ने क्या कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई के को उदास तुम्हारा। परशुराम के सामने राजा राम रघुनंदन बोलते हैं कि जिसने भी शंभु धनुष तोड़ा होगा वो कोई आपका दास ही तो होगा, खुद को दास बता रहा है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो आपका शिष्य हूं, आपके समान कवि त्रिभुवन में कोई नहीं है, लेकिन ये कवि को अभी बीपी बढ़ा हुआ है, वो सीधा घर गया रात में, बोले कल मिलते हैं सुबह, शास्त्र तो कल है ना, और रात में जाके देवी सरस्वती की आरती घुमाया, रात हड़ा बार गिरी, हे भगवती प्रकट हो, और सरस्वती तुरंत आती थी, सरस्वती के सामने प्रणाम करके ये बोला, माता आपने क्या बोला था, बोले क्या बोला था, बोले आपने वरदान दिया था कि तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं हरा सकता, आज तेरा ये बालक तेरा शिष्य केशव काश्मीरी हार के आ रहा है। तो सरस्वती ने कहा अच्छा किससे, बोले निमाई पंडित नाम का लड़का यहां रहता है नवदीप में, वो मुझे हरा दिया। तो सरस्वती ने कहा बेटा केशव काश्मीरी जी, मैंने ये कहा था कि त्रिभुवन में कोई तुम्हें नहीं हराएगा, लेकिन मेरा पति तो तुम्हें हरा सकता है ना, वो भगवान है वो जीव नहीं है, मैंने ये कहा था कि कोई जीव तुझे नहीं हरा सकता, लेकिन भगवान नहीं हरा सकते ऐसा तो मैं नहीं बोला, क्या क्या वो भगवान है, बोले हाँ मैं जितना भी शक्ति पाई हूं ना उसकी कृपा से, वो मेरे भी पूजनीय इष्ट आराध्य है, श्री कृष्ण साक्षात राधा भाव लेकर चैतन्य बन के पृथ्वी पे आए हैं, और वो निमाय पंडित के रूप में विद्या विलास कर रहे हैं। तब तो ये बड़ा खुश हुआ कि तब तो ठीक है, जेवा तेवा इतनी धैर्य हो भाई, हरे है तो भी भगवान से। तब सरस्वती ने कहा त्रिभुवन में तू भाग्यशाली है कि तू चैतन्य महाप्रभु के साथ तेरा चर्चा और उससे हारा है, ये हारना भगवान के साथ हारने में भी यश बढ़ता है। तब तो ये दूसरे दिन बोले सभा लगेगी, कहां सभा लगेगी, अब केशव काश्मीरी पूरे नवदीप के पंडितों के सामने सभा मध्य सब लोग शास्त्रार्थ होगा, शास्त्रार्थ होगा, क्या शास्त्रार्थ होगा, केशव काश्मीरी आकर दंडवत प्रणाम करता है, निमाय पंडित आपकी जय हो जय हो। सब लोग सब नहीं रहे क्या हो रहा है, लेकिन वो जो बच्चे थे ना चैतन्य महाप्रभु के वो हंस रहे थे, महाप्रभु ने कहा चुप चुप हरा मुगा रहे, कोई मना ना बेचारा नमथी गई हुए रखा है थोड़े, बोले चुप रहो सब, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही होते ना उसको, क्योंकि उसने सब सारा सीन देखा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु शालीन थे, बोले चुप रहो, किसी की बात पर हंसना नहीं चाहिए, हंसना अच्छी बात है लेकिन किसी के दुर्गुण पे हंसना ये सबसे बुरी बात है, और नहीं हंसने दिया, और केशव काश्मीरी को फिर स्वागत सत्कार से निभाया। तब केशव काश्मीरी शरणागत हो गया, चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करते हुए बिना शास्त्रार्थ किए प्रणाम करके, अब सारा अभिमान भी चला गया था, अब तो प्रेमी बन चुका था, और सरस्वती ने उसको रहस्य बता दिया था कि ये साक्षात श्री कृष्ण है, इसलिए उसी के नाम का संकीर्तन करते हुए भारत में फिर वो भ्रमण करने लगा। चैतन्य महाप्रभु नवदीप में ऐसी पांड्य यौवन लीला है, उसकी शादी की बात मैं बता रहा हूं, और ये फिर तो पूरे बंगाल में वो निकलते थे विद्या विलास के लिए, पढ़ने जाते थे, और उसी समय लक्ष्मी प्रिया को कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का विरह नहीं सहन हुआ, प्राण छूट गए। तब सनातन मिश्र की लड़की श्री विष्णु प्रिया से चैतन्य महाप्रभु का द्वितीय विवाह हुआ, शायद 20-21 वर्ष की आयु में दोबारा, पहला तो 16-17 साल में ही हो गया, और चैतन्य महाप्रभु के साथ विष्णु प्रिया जी का विवाह सुंदर पाणी ग्रहण ग्रस्त आश्रम निभा रहे थे, लेकिन पांडित्य लीला प्रकाश कर रहे थे। अब तो केशव काश्मीरी जब प्रणाम करके जय जयकार बोल दिया, अब तो सारे नवदीप के पंडित गौरव लेते थे कि हम निमाय के गांव के हैं, निमाय के गांव के, लेकिन निमाय के सामने जाने की किसी की हालत नहीं। एक दिन क्या हुआ भक्तों, समय जाता रहा, काल को क्या पसंद है, जगन्नाथ मिश्र का अवसान हो गया, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, चैतन्य महाप्रभु ने विधि सर ब्राह्मणों से मिलकर जो भी कार्य होता है अंतिम चेष्टि संस्कार किया, फिर जो उसकी अस्थि होती है उसको लेकर महाप्रभु ने सोचा कि हमें हमारे पिताजी का पिंडदान श्राद्ध और वो गया जाना है, गया में होता है ना, गया भारत में प्रसिद्ध है, तो महाप्रभु कुछ ब्राह्मण भक्तों को लेकर गया यात्रा के लिए निकल गए, क्यों? अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। और इस प्रसंग से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी हो, ऐसे वैष्णव शुद्ध हो, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम शुद्ध नहीं है। भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था, और भगवान चैतन्य स्वयं अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं, तो हमें भी भारतवर्ष की संतानों को चाहिए कि अपने माता पिता का श्राद्ध जरूर करें। ये भारतीय विधि है, और उसको विष्णु प्रसाद, ब्राह्मणों को भोजन, यथाशक्ति दान दक्षिणा, गीता भागवत का संकीर्तन, ये जब आप कराएंगे ना, तो इसका जो पुण्य है वो आपके माता पिता को, जहां भी वो होंगे, जिस दशा दिशा में होंगे, उससे उसका मंगल होगा। ऐसी कई कथाएं, समय नहीं बताने का हमारे पास, गलत नहीं बोल, व्यास जी ने लिखा हुआ प्रमाण के साथ। हाँ, भगवान की शुद्ध भक्ति करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान सब इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन ऐसे शुद्ध भी हो तब भी करो, क्यों? दूसरों को सिखाने के लिए, क्योंकि आपको जरूरत नहीं, लेकिन आप छोड़ दोगे तो आपके कारण आपका आपका समाज परिवार छोड़ देगा, जबकि वो उस लायक नहीं है। तो यद्यत आचरति श्रेष्ठ, महान पुरुष, घर के जो सीनियर व्यक्ति है, समाज के जो अग्रगणी है, वो जो काम करते हैं, तो पीछे वाला समाज वही करता है, तो उनको जरूरत न होने पर भी करना चाहिए, ताकि पीछे वाले समाज को भी एक दिशा मिले। जैसे हमारे कृष्ण को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन जगत गुरु बने हैं तो कर्म करके सिखा रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, नहीं तो उनको क्या जरूरत है बताओ। गीता में खुद कहते हैं, मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, और कोई कर्म मुझे बांध नहीं सकता, नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। अर्जुन, मुझे कोई कर्म नहीं बांध सकता, ना मुझे कर्म करने की इच्छा है और ना हमें कर्म करने की जरूरत है, फिर क्यों करते हो? बोले, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। हे पार्थ, मैं जैसा करूं लोग ऐसा सीखेंगे ना, तो दूसरों को सिखाने के लिए करना पड़ता। जैसे माता चलना सिखाती है बच्चे को, तो ऐसे ऐसे चलो, टीचर लिखना सिखाती है, पर उसको तो आता है, वो ये करने की जरूरत, लेकिन उसको सिखाने के लिए यही विधि है। तो चैतन्य महाप्रभु गया श्राद्ध करने, ब्राह्मणों के साथ गए, रास्ते में ग्रीष्म के कारण कुछ ज्वर आ गया, चैतन्य महाप्रभु का शरीर गर्म हो गया, पाव बुखार कहते ना, अब गांव में तो रास्ते में जो गांव आता था उससे दवाई लेते थे वैद्यों से, लेकिन मेल नहीं हुआ, 2-3 दिन बुखार और बढ़ गया। तो महाप्रभु को ब्राह्मणों ने पूछा कि क्या करे, गया जाए कि रिटर्न चले जाए, क्योंकि आपका बुखार हमको लग रहा है कि समस्या बढ़ा देगा, चल के जाना होता था उस समय, और बिहार अब गए हो, गया बहुत गर्मी होता है, तब क्या करे? बोले, काम करो, अब की बार जो भी गांव आए ना, वहां जो भी वैष्णव ब्राह्मण हो ना, उसके चरण धो के चरणामृत हमको पिला देना, बस। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और ये ब्राह्मणों ने ऐसा किया, और वैष्णव ब्राह्मणों के चरणों का जल पी के चैतन्य महाप्रभु का बुखार उतर गया, और महाप्रभु फ्रेश हो गए, नाचने लगे, गाने लगे, और आनंद से गया की ओर दौड़ने लगे, और ये पूरे जगत को मैसेज देते गए, भक्त पद जल, भगवान के भक्तों के चरणों का जल गंगा से भी बढ़कर हो जाता है। कई कथाएं हैं और ज्यादा नहीं कहना, हमारे द्वारकाधीश और सुदामा चरित्र को याद कर लो, सुदामा जैसे ब्राह्मण के चरणों का जल धोके भगवान ने दिखा दिया पूरे विश्व को, कृष्ण ने, है ना, पूरी द्वारिका में छटका, खुद पान कर रहे, कह रहे सुदामा तुम्हारे चरणों के जल से आज हमारी द्वारिका धन्य हो गई। बहुत उदाहरण है, लेकिन इससे बढ़कर क्या मिले। तो चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे, और जैसे ही गया में पहुंचे, आप कभी गया गए हो तो वहां विष्णु सब सब गया है, विष्णु गया, शिव गया, मतलब बोलते हैं, और उसके चरण होते हैं, विग्रह होते हैं, मंदिर है, बहुत सारे ब्राह्मण है वहां विधि कराने वाले। अब चैतन्य महाप्रभु ने जाकर जब देखा विष्णु मंदिर में, एक मंदिर में भगवान के चरण थे पत्थर पे, और वहां ब्राह्मण सब खड़े थे, और वो ब्राह्मण सब भगवान के चरणों की महिमा गा रहे थे। क्या गा रहे थे? बोले, काशीनाथ जे चरण हृदय धरीला, काशीनाथ मतलब शिवजी जिस चरणों को हृदय में रखते हैं, और लक्ष्मी स्वयं हस्ते जे चरण सेविला, लक्ष्मी जिन चरणों की सेवा करती है, और भागीरथी जैन गजल, ये जो गंगा जिन चरणों से निकली है, गंगा जी भी भगवान के चरणों से निकली, और ऐसे चरणों की जो दर्शन पूजन सेवा करता है उसके सारे पितर मुक्त हो जाते हैं, सभी पापों से छुट जाते हैं। ये ब्राह्मण लोग ऐसा बोल रहे थे। तो लिखते हैं वृंदावन दास ठाकुर, प्रभुर कमल नयने अश्रुबिंद झरिल। चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, भगवान के चरणों का प्रशंसा सुन के कि वाह मैंने आज अपने जीवन में विष्णु चरण देखा, जबकि खुद है, लेकिन विष्णु के चरणों की महिमा सुन के चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, प्रेम भाव में आ गए। आज तक नहीं हुआ, देखो अब मूड चेंज हो रहा है। अब तक पंडिताई चली, पावर चलाया, ऑर्डर चलाया, लेकिन कृष्ण भक्ति का एक भी रंग नहीं। पूरे नवद्वीप में लोग सोचते थे ये निमाय पंडित अगर भगत बन जाए ना तो उसके पीछे कई हजार भगत बन जाएंगे। लेकिन निमाय पंडित क्या करते थे, भक्तों की मजाक करते थे। जैसे श्रीवास माला लेके आता था ना, श्रीवास पंडित है ना पांच तत्व में नारद का अवतार, वो भगत थे, वो माला लेके आते थे तो चैतन्य महाप्रभु मिलते थे, ए श्रीवास प्रभु, ये रास्ता बदल देते थे गंगा, बोले ए तुमको बोला इधर आओ इधर आओ, क्या है निमाई, बोले आपसे एक बात कहनी, माफ करो बाबा कोई बात नहीं करनी आपसे, क्योंकि ये मजाक करते थे। उसको कोई भी श्लोक पूछते थे, बोलो मुक्ति का अर्थ बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं। तो बेचारे श्रीवास भी पंडित थे, शास्त्र जानते थे, लेकिन जानते थे कि ये उल्टा है, जिसको बोलना है तो उल्टा ही बोलेगा। तो मुक्ति का अर्थ बता, महाप्रभु कहते रॉन्ग, और फिर कोई पुराण उपनिषद बोल के देखो मुक्ति का अर्थ ये है। तो निमाय कहते थे, अरे श्रीवास कहते थे अच्छा यही है, तब कहते नहीं ये नहीं है ये है। तो सारे भक्त लोगों को परेशान करके रखा था उस समय, एक तो भक्त कम थे और ऊपर से ये परेशान करते थे। आज तो यही है, एक तो सूरत में भगत ओसा ने मैं नड़वा वाला बता रहा बोलो मुंजाई गया बिचारा, एटले अड़ा प्रोग्राम करे कि कैरेक भक्तों मळे कैक प्रेम आपे, क्योंकि आप भक्ति करोगे तो जिसको नहीं करना है वो आपकी मजाक आपकी कमियां निकालते रहेंगे। महाप्रभु यही विलास कर रहे थे। तो सब भक्त लोग के हृदय में एक ही चाह, वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, प्रभु हमारे निमाय को भगत बना दो बस, क्योंकि ये बनेगा तो बद्धन बने नक्ष सबको बना देगा ये। लेकिन एक बनते नहीं थे भगत, पंडिताई करते थे, सबकी मजाक करते थे। अब चेंज हो रहा है लीला, पिताजी का श्राद्ध करने गया गए, कैसे चेंज हुआ जीवन, देखो टर्निंग पॉइंट। हमारे जीवन का सौभाग्य दुर्भाग्य कब सौभाग्य में बदलता है, जब भगवान के द्वारा उसका प्रेमी वैष्णव गुरु जीवन में आता है। ब्रह्मांड भ्रमिते खोन भाग्यवान, कोई गुरु वैष्णव जीवन में आए तब जीवन की सुंदरता सौभाग्यता बढ़ती, यही महाप्रभु ने लीला में दिखाया। लिखा गया है ईश्वरपुरी नाम के साधु माधवेंद्रपुरी के शिष्य घूमते घूमते तीर्थ यात्रा करते करते गया में आए, और चैतन्य महाप्रभु गया में थे उसी समय। और हुआ क्या, जैसे विष्णु मंदिर दर्शन करके बाहर निकले निमाय और ये ईश्वरपुरी अंदर गए, दोनों का मिलन हुआ रास्ते में। उसको देख के ही चैतन्य महाप्रभु एक टक जैसे कमल भंवरे भंवरा जैसे कमल को देखता है, ईश्वरपुरी को देखता ही रहा, देखते ही रहे निमाय पंडित। और ईश्वरपुरी भी समझ गए चैतन्य महाप्रभु का तेज, क्योंकि नवदीप में जब छोटे थे ना तब इसको देखे थे कि ये जगन्नाथ मिश्र का लड़का निमाय है, और इसका रंग रूप तेज बता रहा है कि ये साक्षात ईश्वर सामान्य नहीं है, ईश्वरपुरी समझते थे। तो आज हजारों आज मतलब कई वर्षों बाद मिलन हो रहा है, 7-8 वर्ष के बाद मिल रहा है, नवदीप में पहले मिले थे। अब देखिए दोनों सामने खड़े, चैतन्य महाप्रभु देख रहे इनको देख रहे। कभी कभी आपके जीवन में यह अवसर आएगा या आया है, क्या आ गया होगा, कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जिसको देख के दिल मन समर्पित होने को चाहता है। ये जो गुरु है ना गाड़िया ना खिन्नो करे कही जा करी ना खिन अल्लाट वो थोड़ो से, ये कोई फैशन नहीं है। जो लोग बाय फोर्स गुरु कराते ये करो मैंने इसको किया इसलिए तुम भी ये करो, ये चीटिंग है। ये एक अंदर आत्मा अपना मन समर्पित होता है किसी साधु के प्रति, जिसमें किसी का दबाव नहीं चलता। आ थोड़ा व्यवहार से बे जना वखाण करे था नाखो, ये बिल्कुल बड़ी ऊंची बातें हैं भक्तों। और आप विचार करिएगा, आप लोग बुद्धिमान हो, 10 रुपए की आइटम 10 बार देखते हो, जीवन में गुरु करना है बस ऐसे ही थोड़ी करना है। कभी कभी कोई ऐसा पात्र होता है जीवन में जिसके सामने मन समर्पित होता है, बिना कुछ बोले उनके बाजू में बैठ के ही आत्मा आनंद का अनुभव करता है, बिना कुछ बोले ज्ञान की एक धारा जीवन में आती है। ये भगवान की व्यवस्था है। जैसे नारद जी और ध्रुव का मिलन याद करिए, कई प्रसंग है जीवन में। और याद रखिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते, इस संसार में हम लोग 84 लाख योनियों में युगों से घूम रहे हैं। ये मानव जीवन में एक अवसर आता है जिसमें हमारे जीवन में गुरु चुनना है, जो हमें कृष्ण भक्ति विज्ञान दे और जन्म कर्म से छुड़ा दे। गुरु वो नहीं है जो केवल बस संसार के अलग अलग पूजाओं में, कर्मकांड में और संसारिक प्रवृत्तियों में लगाए। गुरु वह है जो हमें कृष्ण भक्ति का ज्ञान दे। बहुत बातें हैं, हमें इतना ही कहना है इस प्रसंग से। चैतन्य महाप्रभु की पंडिताई सब साफ हो गई, केवल इनको अभी बोले ना ईश्वरपुरी, कुछ नहीं बोले, देख के ही बस दिल प्रणाम करने को चाहता है, पूजने को मन चाहता है, उससे कुछ सुनने के लिए कान लालाई देगी, ये कुछ कृपा करके बोले। ऐसे गुरु ने बोले तो माथुसड़ा क्या, अरे बनता है हलवाना, मतलब वो अभी नहीं है, बहुत दूर हो तुम, ना वो गुरु है ना तुम शिष्य हो, कोई में कुछ लेने का नहीं, किसी में दम नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद तो लिखे है, सुखदेव जी जब परीक्षित के सामने पधारे ना भागवत में, तो वहां लिखा प्रभुपाद कि ये गुरु कोई फैशन नहीं है और ना तो संसारिक भोग विषय बढ़ाने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। जीवन से मुक्त होने के लिए, कृष्ण प्रेम भक्ति पा करके भगवत धाम जाने के लिए गुरु चुनना है। और ऐसी तुम्हारे मन में इच्छा नहीं है तो अभी आटा मारो, उतावड़ मत करो, कंठियो पैरवा में प्लॉट रोकी नो ना कोई कदे भाव बदी सके, एग्रीमेंट नो कराओ। होता है ऐसा, कोई फोर्स नहीं है। हाँ, जीवन महत्वपूर्ण है, सच्चे मिले तो पहचानना चाहिए और जल्दी करना भी चाहिए, ये भी है, लेकिन उसमें फोर्स भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का हृदय समर्पित हो रहा है और क्या कहते हैं मालूम है चैतन्य महाप्रभु के शब्द, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से कहते हैं, प्रभु कहे गया यात्रा सफल अमार। हे ईश्वरपुरी, आप साधु के दर्शन से आज मेरी गया यात्रा सफल हो गई। और सच बात है, कोई भी तीर्थ में आप जाओ, चाहे गोकुल जाओ, वृंदावन, मथुरा, एनीवे, कहीं भी, अगर वहां वैष्णव मिलते हैं उसके प्रेमी, तो आपकी यात्रा सफल है। और इस्कॉन वालों को तो चिंता ही नहीं, वहां क्या मिलेगी, ये लोग साथ में ही लेके जाते हैं, पहले से ही सफल। भक्तों के साथ ही जाना है। प्रभु कहे गया यात्रा सफल हमार, जय क्षण देखी लो चरण तुम्हार, आपका चरण देखा मेरी गया यात्रा सफल। बोले आप तो पितरों का श्राद्ध करने आए हो, तुम्हार दर्शन कोटि पितृगण। हे ईश्वरपुरी, आप इतने कृष्ण प्रेमी हो, आपको देखने मात्र से मेरे करोड़ों पितर लोग का उद्धार हो गया। मैं तो एक पिता का श्राद्ध करने आया था, लेकिन आप जैसे तीर्थ भक्त मिल जाए तो कितने तीर्थ मेरे चल जाएंगे, करोड़ों पितरों का उद्धार हो गया। अब कृपा करिए, हाथ जोड़ दिए निमाई, जो सब उसके सामने हाथ जोड़ते थे, केशव काश्मीरी हाथ जोड़ के गया, पूरा नवदीप जिनके चरणों में गिर रहा है, वे निमाय पंडित हाथ जोड़े और क्या कहते हैं, कृष्ण पाद पद्म अमृत रस कराओ मुही पान। हे ईश्वरपुरी, कृष्ण कथा अमृत रस का मुझे पान कराओ, मैं आपके चरणों में भीख मांग के ये कहता हूं। समर्पित हो गए पूरा और कहा कि मुझे आप अपना शिष्य बना के मंत्र दोगे। ईश्वरपुरी तो सब जानते थे कि ये कृष्ण है, बोले तुम मंत्र की बात कहते हो, मैं तो पूरा ही तुमको देने को तैयार हूं, मंत्र क्या चीज। नहीं नहीं प्रभु, प्लीज हमें कुछ कृष्ण कथा सुनाइए। परीक्षित ने सुखदेव को गुरु बनाया, क्या सुनाया गुरु ने, क्रिकेट मैच ना, हमारा भागवत सुनाया। गुरु जीवन में कृष्ण कथा सुनने के लिए है, इसको नहीं सुना रहा है, कुछ और करा रहा है, तो समझिए कुछ कलयुग का प्रवेश है। जीवन में गुरु हमें भगवत भक्ति सुनने के लिए, ये और कोई कोई काम नहीं गुरु का। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि हमको कृष्ण भक्ति का संदेश दीजिए, कथा सुनाइए मुझे कृष्ण का और मेरा उद्धार कर दीजिए। देखो, जिसको देख के ही आपको भगवान कृष्ण की भक्ति करने का मन हो जाए, समझो वो गुरु है। जिसको देख के राम राम लेवानु मन थाय, रामायण हांभळवानु करवानु मन थाय, समझी लेवानु की पात्र को ऊंचो है बोलना क्या, जिसको देख के ही हमें भगवान का स्मरण आए, भजन करने में मन लगे, समझना चाहिए वो हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा है, वो सामान्य नहीं है वो व्यक्ति, ये उसकी पहचान है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम से प्रणाम किया, मंत्र देने के लिए वादा भी किया, बोले कल मिलेंगे स्नान करके। और महाप्रभु घर गए, घर तो नहीं था, वहां पेड़ के नीचे जो भी व्यवस्था थी, भोजन पका रहे। ईश्वरपुरी घूमते घूमते दर्शन करके आए, बोले निमाय पंडित क्या कर रहे हो, भोजन बना रहे। मेरा भाग्य है, मुझे भी आपके हाथों का मिलेगा। खुश हो गए चैतन्य महाप्रभु, बोले आप हमारा प्रसाद खाएंगे, मेरा भाग्य है गुरु को खिलाना। तब तक इसने कहा लेकिन आपने तो आपके लिए ही बनाया होगा, मैं खा लूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। बोले वो चिंता मत करें, मैं डबल दूसरा बना लूंगा, लेकिन प्लीज आप हमारा भोजन ले लीजिए थोड़ा। हाथ जोड़ने लगे मीना, बोले नहीं मैं अकेले नहीं खाऊंगा, आप खाना नहीं, पहले आप खा लीजिए, बचेगा तो हम खाएंगे। बोले थोड़ा ही है, बचेगा तो कुछ नहीं, तो मैं भूखा रहूंगा। बोले चिंता मत करें, आप खा लिए मैं बना दूंगा प्लीज। तो प्रेम से ईश्वरपुरी खाने लगे, चैतन्य महाप्रभु परोसने लगे अपने गुरु को, और उसी समय लक्ष्मी जी ने अंतर ध्यान होकर इतनी सुंदर आइटम एक्स्ट्रा बना दी, क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण है, लक्ष्मी तो सेवा में रहती है। और कहा मंत्र दीजिए हमको, द्वादशाक्षर मंत्र कहा गया चैतन्य भागवत में, सुनाया गुरु के मुख से कृष्ण कीर्तन सुनते ही, हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम 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 हरे।
ज्ञान पंडित के पर्वत निमाय पंडित अब कृष्ण प्रेम भक्ति की गंगा में डूब गए। बस दोनों भुजाएं उठाकर आंखों से अश्रु बहाकर हरे कृष्णा 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 हरे
हरे
राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ के दो मिनट करेंगे।
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
तभी से माना जाता है जब जीवन में कृष्ण भक्ति देने वाले गुरु आए। शुक्र रज और वीर्य के मिश्रण से एक शरीर बनता है, उसको शुक्राणु जन्म कहा। पशुओं का भी ऐसे ही होता है, हम लोग का जैसे हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मंत्र से, शास्त्रों के दिव्य ज्ञान से, गुरु अपनी गरिमा से हमारे पाप कर्म छीन लेता है और भक्ति प्रेम देता है, जिसको हम दीक्षा कहते हैं। वो जन्म असली जन्म है और वो जन्म हमें जन्म मृत्यु से छुड़ा देता है। तो जब तक वैष्णव गुरु के आश्रय में कृष्ण भक्ति मंत्र न मिले, तब तक पशु जैसा जीवन हमारे शास्त्र कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न है कि आज जीवन में ईश्वरपुरी जैसे महान माधवेंद्रपुरी के परंपरा में एक वैष्णव जीवन में आए। और बहुत सुंदर बातें हैं, लेकिन अंत में सार में इतना ही है कि चैतन्य महाप्रभु एक दिन रिटर्न आ गए, फिर नवदीप, फिर बहुत लंबी लंबी बातें हैं, लेकिन एक दिन वो घूमते घूमते संकीर्तन करते करते कुमारहट नाम के गाँव में गए। वो कुमारहट नाम आज भी है वर्धमान जिला में, वो ईश्वरपुरी का गांव था, मतलब अपने गुरु के गांव में गए। और किसी ने बताया कि ये आपके गुरु जी का घर है, पुराना बिल्कुल, ऐसे होते ना, जाते गांव में तो पूछते कि कहां, तो बोले ईश्वरपुरी के गांव में जैसे ही चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो साष्टांग दंडवत किए। बोले यह पवित्र भूमि है जिस पर हमारे गुरु जी ने चरण रखे है, प्रकट हुए है, लीला की। और जब वो स्थान बताया तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां से कुछ मिट्टी उठाई और वो अपना बहिर्वास पहने थे कपड़ा, खेस होता है ना ऊपर डालते हम लोग, उसमें डाल दी और गांठ लगा दी। तो सभी भक्तों ने पूछा, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, क्यों मिट्टी उठाई, क्यों डाल रहे हो? प्रभु बोले, ईश्वर पुरी रा जन्म स्थान सेई मृतिका मोर धन प्राण। हमारे गुरु के गांव की जो ये मिट्टी है वो हमारा जीवन धन प्राण है। बोले क्या करोगे इसको रख के? बोले रोज खाऊंगा। चैतन्य आज भी उस जगह पर चैतन्य डूबा बोलते हैं उसको, बड़ा खड्डा हो गया पशी धापड़ी जगह, क्या दो रहवा दे, तो बड़ा खड्डा बड़ा एकदम बन गया, क्योंकि सब लोग जाते वहां से मिट्टी उठाते हैं। लेकिन देखिए हमारे गौरांग महाप्रभु की गुरु भक्ति, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, जो बोलना है वो सिखाने आए हैं ना, तो इसलिए गुरु के चरणों की रज को अंजन कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो गुरु चरण रज अंजन आंजोगे, मतलब ऐसे नहीं डायरेक्ट दो धूल नहीं आंजना, जो जो भाषा सीधे सीधे लेता नहीं। डालत दिव्य दृष्टि ही ये होती, मतलब आपके हृदय में दिव्य ज्ञान हो जाएगा अगर आदर है उनको, उनके प्रति समर्पण है, ये भाव है। नहीं तो बस गुरु जी तुम्हें हालो ना लगे मैं अमर माटी जोती खरो टाइट चार बजे बस तुम्हें नावत के अमर पानी जोतु पण ले ओलन तोड़ भी नाखो ना नहीं हमने कीधु से तुम्हारे चरणों जल लेवन टाइट ना नवरावा बोलो सर्दी करने की गुरु कुछ ऐसे होते सीधा ही पकड़ते हैं बस तो, मर्म सार नहीं समझते एज इट इज एक्सेप्ट करते है। तो समर्पित पण का भाव है मोक्ष मूलम गुरु कृपा क्योंकि कैसे कैसे बहुत सारे श्लोक आए हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु गुरु गौरांग जयते हम लिखते हैं तो बड़ी आदर प्रेम से उस मिट्टी को उसका स्वरूप मानकर ये समर्पण और आदर का सूचक है जो महाप्रभु ने अपने चरित्र से सिखाया। आइए अब कुछ क्षण हमारे पास बचे हैं आज के सत्र के, हमने कुछ चैतन्य लीलाओं का आपके सामने आस्वादन कराया और भी है अनंत है ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, क्योंकि अब तक चैतन्य महाप्रभु की जितनी लीलाएं हमने बताई ये दो तीन दिन में, उसके पहले तो कुछ पता नहीं मुझे भी याद नहीं मैं क्या क्या बताया, लेकिन जो भी लीला बताई उसमें चैतन्य महाप्रभु की जो मूल लीला है संकीर्तन युग धर्म के लिए आए थे ना संकीर्तन पर, वो तो अभी चालू किए नहीं जो आप लीला सुन रहे हो। दूसरा उससे भी बढ़कर मूल कारण था कृष्ण प्रेम का, खुद को आस्वादन राधा भाव का, वो भी लीला आई। ये तो चैतन्य महाप्रभु के बचपन की शादी की वो सब लीला आई, उसके अंतर्गत कुछ याद आ गया जैसे वो गोरा दक में गए थे संकीर्तन करते हुए या फिर नदिया में संकीर्तन के लिए निकालते थे, तो ये बहुत अल्प छोटी छोटी बातें संकीर्तन की हमने याद कराई, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन हुआ कैसे चालू हुआ, रात में कैसे करते थे, दिन में कैसे करते थे, किस स्टाइल से करते थे और क्या क्या इसका इफेक्ट होता था, ये बड़ी लंबी लंबी बातें हैं। और ये तो हो है लेकिन जीवन के अंत में क्यों संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु, अब लक्ष्मी प्रिया जैसी पत्नी है, इतना सुंदर जीवन है, स्वयं भगवान है, आनंद मंगल महोत्सव है, तो फिर पत्नी को छोड़ के संन्यास लेना और पूरी में जाके फिर रोना राधा भाव में, और उस समय कैसी कैसी लीला है, एक समुद्र है। बस हमने तो यहाँ केवल कुछ बिंदु बरसाए हैं, सिंधु में तो अवगाहन करते हैं भक्त लोग करते करेंगे आगे। तो हम सुना रहे थे कल कि भगवान श्री कृष्ण को, आज हम क्लियर कर देते हैं उसको कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण क्यों गौर सुंदर बने, द्वापर के श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र कलयुग में गौर सुंदर बने क्यों, तो हम चालू कर रहे थे कथा जिस श्लोक की प्रार्थना कि श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्यो वान एवा, राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है ये कृष्ण खुद भी नहीं जानते, इसलिए वो जानने के लिए वो राधा का हृदय लिए, एक कारण। और क्या जानना था, क्योंकि उसको लोभ हो गया, क्या लोभ हो गया कि राधा रानी जब मुझे देखती है, मेरे कीर्तन करती है, मेरा रास करती है, कुछ भी करती है, तो मेरे में ऐसा क्या है कि राधा रानी सब कुछ छोड़ के मुझ पर ही पूर्ण न्योछावर है। स्वाद्यो एना अद्भुत मधुरिमा की दृश्यो वा मदीय, मेरे में ऐसा क्या माधुर्य है, मेरे में ऐसी क्या सुंदरता है जिसको देख के ये सब गोपिया और राधा रानी सब छोड़ के बस मुझ में ही देखती रहती है, मुझे ही सुनती रहती है, ये मुझे जानना है, ये भी मुझे जानना है। तीसरा, जब ये मुझे देखती है मुझे सुनती है तो इसको कितना आनंद मिलता है अंदर, किस टाइप का आनंद मिलता है, और ये सब मुझे लोभ हो गया है, और ये लोभ कृष्ण को हुआ कृष्ण अवतार में, जहां हम कल रात को थे, कहां थे बोले राजा राम सरकार जब बने अवतार लिए तो उसका साक्षरस मर्यादा में रह गया, सखा थे सुग्रीव विभीषण लेकिन कंधे पर नहीं चढ़ सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते, जब आए तो प्रणाम मार सकते, भगवान ने कहा ये सब सखा है लेकिन सखा नहीं है, सखा तो कहता चल यार घूम के आते डुमस, सुग्रीव कभी बोल सकता है राम जी को अरे राम चलो ना थोड़ा, जब भी आएगा महाराज दंडवत मारेगा, तो राम जी ने कहा ये सखा है लेकिन मर्यादा में है, संभ्रम सखा है, दशरथ जी वाला रस पूरा हुआ लेकिन साक्ष्य का लोभ हो गया, लेकिन साक्ष्य मिले पूर्ण नहीं हुआ। और राम में माधुर्य भी है, सीता जी के साथ माधुर्य की लीला है, भगवान राम स्वयं पुष्प चुन के वेणी बना के सीता जी को पहना देते। ले किरु कोई दी कृष्ण ने तो बात तो छोड़ो, राम ने बात करो, कृष्ण ने तो वाह बद्दा गार्डन इन्हें खाली किया। लेकिन राम के विषय में भी चित्रकूट में वर्णन है, एक बार पुनि कुसुम सुहाए, भगवान राम स्वयं पुष्प चयन किए और पुष्प चयन करते हुए तो सीता जी से मिले थे जनकपुर में। जब प्रथम बार सीता जी मिली तो राम जी क्या कर रहे थे, पुष्प ही चयन कर रहे थे। और पुष्प चयन करते हुए सीता जी ने देखा, आहा कमल जैसा मुखड़ा और ऊंचे उड़कर गुरु की सेवा के लिए पुष्प प्रभु चयन कर रहा है लेकिन पसीने निकल रहा है। सखियों को कहते हैं, सखी आ फूल तोड़वा परसी निकले, आ धनुष तोड़ से हम फाइन थोड़ो तो इसको फूल, क्योंकि राम इतने कोमल है, फूल से भी कोमल है। बोले ये पुष्प चयन में भी जिसको पसीना निकल रहा है वो धनुष के क्या होगा। सखियों से बातें लिखी गई है लेकिन उसमें भी माधुर्य है राम जी का भी, लेकिन माधुर्य में भी मर्यादा है। क्या एक पत्नी व्रत धर, अच्छा विरह भी है, विप्रलंब भी है, विरह वियोग हो गया राम सीता का, लेकिन वो स्वाभाविक नहीं हुआ, शक्ति से हुआ। रावण हर गया इसलिए, धोबी बोल दिया इसलिए, आप समझ रहे हो ये सारी बातें। तो अब पूर्ण अवतार होगा भगवान श्री कृष्ण का, जिसमें साख्य माधुर्य पूर्णता में होगा, कोई मर्यादा नहीं, जैसे मधुमंगल कोई मर्यादा नहीं, कृष्ण के ऊपर चढ़ जाए उसको पीटे, उसका खाना छीन ले, उसको झूठा कहलाए, सुग्रीव कभी कर सकता है ऐसा, झूठा खिला सकता है विभीषण, ये सखा है लेकिन इस टाइप के नहीं है, लेकिन ये करते थे। अच्छा माधुर्य है लेकिन हजारों गोपियों के साथ रास, हजारों गोपियों के साथ अलग अलग रस, कृष्ण जिस भी गोपी से मिलते थे, यमुना के तट पर कोई मिल जाए, अरे सखी सुनो, बोले क्या है, बोले आज रात में एक सपना है। क्या सपने में आया कि तू मेरी दुल्हन बनी थी, बोली तो पानी पड़ी तुझे, तब तो दूसरी मिलती दूसरी गली में, ए सुनो सुनो क्या हुआ, बोले कल मैं बंसी बजा रहा था, गैया चरा रहा था, एक ज्योति से आए तो मैंने उसको हाथ दिखाया, मैंने पूछा मेरा विवाह किससे होगा, तेरा ही नाम बताया, बद्दन एक डायलॉग। अब ये कृष्ण है, मतलब अलग अलग रस, कोई मर्यादा नहीं माधुर्य में। और उसके बाद जब विप्रलंब भी हुआ तो पूरे भगवान की जो ऐश्वर्यता है, सृष्टि है, उसमें सार माधुर्य है। माधुर्य भगवत्ता सार, व्रजे कैल प्रचार, ताहा शोक व्यासेर नंद। भागवत प्रमाण है, शुक जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवत्ता सार नहीं है, कृष्ण का माधुर्य सार। भगवान तो है लेकिन उससे बढ़कर बात है माधुर्य, क्योंकि भगवान होते हुए भी किसी के सखा है, भगवान होते हुए भी किसी के पुत्र है, भगवान होते हुए भी किसी के प्रियतम है, ये उसका माधुर्य है। और ये आस्वादन इसमें हुआ, बिल्कुल क्लियरली हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, कृष्ण अवतार में भी क्या बात अधूरी रह गई, यही बात अधूरी रह गई। कृष्ण ने देखा कि मैं राधा रानी के साथ होता हूं तो मुझसे ज्यादा आनंद राधा को आता है, मुझे देखकर, मुझे सुनकर, मुझसे मिलकर। तो राधा को कितना आनंद आता है ये जानने के लिए मुझे राधा का हृदय लेना पड़ेगा, अर्थात राधा बनना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण खुद तो नहीं अपना आस्वादन कर सकते, आस्वादन करने के लिए विषय नहीं आश्रय बनना पड़ता है ताकि वो विषय को आस्वादन करे। तो भगवान को लोभ हो गया। अब सब गोपियां आनंद लेती थी, रासलीला में क्या हुआ, रास हो रहा था, भगवान कृष्ण राधा रानी को लेकर चले गए, सब गोपियां रो रही है और देख रही है कि कौन गायब है, कृष्ण गायब है लेकिन और कोई गायब है, बोले एक है वृषभानु निंदनी नहीं थी, तो मतलब सब गोपियों में भी एक कोई थोड़ी अलग है, श्रेष्ठ है, अन्याराधितो नूनम भगवान हरीश्वर। अब प्रश्न है कि सब गोपियों में माधुर्य है, परकिया रस भी है, देखो ये परकिया रस भी कृष्ण ने पूर्ण किया, राम ने तो है ही नहीं, दूसरे की स्त्री के साथ प्रेम करना, इसको पर किया, दूसरे की है पर, और उसको अपना मानना और उससे रस प्रेम लेना, परकिया भावे व्रजेते प्रचार। और एक बात याद रखिएगा आप भक्त लोग कि कोई भी गोपी या कोई भी स्त्री कृष्ण की पर नहीं है, सब कृष्ण की ही भाव पर किया है, समझ रहे हैं आप लोग, वो गोपी मान रही है कि मैं इसकी हूं, भगवान मान रहे कि मैं इसका हूं, ताकि इसमें प्रेम रस बढ़ाना है, वास्तव में कोई किसी का सब भगवान के ही है, भाव पर किया है, बाकी तो सब किया है अपनी है, लेकिन एक रस लेना था कृष्ण को जो केवल वृंदावन में है, ब्रज में है। ओके, आप सो मत जाइए, ऊंचा है लेकिन अब मैं नीचे लाता हूं इसको, इसको थोड़ा नीचे लाता हूं। केवल पहले एक दिशा तो दिखा दो, मैं बोला मैं मने मने तैयार थी, तो हेठो जाओ जाओ, पर मैं तो थोड़ी व्यात तो हरकी करूं क्या चलता है। राधा रानी का क्या प्रेम है, क्या महिमा है, ये जानना है। मेरे रस माधुर्य में राधा को कितना आनंद होता है, ये सब लोभ हो गया, और ये लोभ हो गया इसलिए कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि चलिए नीचे, यही प्रेम भक्ति रस जो आप में है मेरे लिए वो नीचे बांटना भी है और मुझे भी आस्वादन करना, दोनों काम हो जाएगा। तो अब लीला कैसी घटी, एक दिन की बात है, श्रीमती राधा रानी यमुना के तट पर अपने निकुंज में पुष्पों की शैया पर, जो ललिता विशाखा ने सजाया था बढ़िया से, उस पर बैठी थी, और आजू बाजू अष्ट सखिया है ना मायापुर में, ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता रंगदेवी सुदेवी इंदुलिखा इंदुलेखा और त्रिंग विद्या, ये अष्ट सखी है राधा रानी की सहचरी, तो सारी अष्ट सखिया सेवा में है राधा रानी की, और राधा रानी ललिता विशाखा के नेतृत्व में सब ये सारी सखिया किसकी आज्ञा में काम करती है, ललिता की आज्ञा में, ललिता हेड है, क्योंकि ललिता मास्टर है, जानती है कि राधा को क्या चाहिए कृष्ण को क्या चाहिए। तो ललिता जी के नेतृत्व में सब सजाया गया है। अब कैसा वातावरण था, लिखा है हमारे आचार्यों ने, जयदेव जी ने गीत गोविंद में बड़ी मधुर मधुर बातें लिखी है कि उस निकुंज में, उस यमुना के तट पर सखियों के द्वारा सजाया हुआ जो कुंज है वो कैसा था, उसमें सुंदर मधुर मधुर मालती के, कमल के, गुलाब के पुष्प थे, और उन पुष्पों से सजाया हुआ था, उन पुष्पों से सुगंध निकल रही थी, प्लास्टिक के नहीं थे, असली, और पूरे निकुंज में पशु पक्षी गूंज रहे थे, जैसे कोयल कुहू कुहू कर रही थी, पपीहा रट रहा था, पियो पियो पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, बड़ा रमणीय वातावरण है, किसकी, अपने प्राण प्रियतम की, एक एक युग एक एक क्षण युग जैसा जा रहा है कि अभी श्याम सुंदर आएंगे, ललिता देखो ना क्यों नहीं आए, उसकी व्यवस्था क्या की गई है, राधा रानी सिंगार करके बैठी है, उसको तो सारा वातावरण मधुर मंगल लग रहा है, और उसी समय कृष्ण के माथे पर जो पंख लगा है मोर का, असली मोर आकर नाच रहे है। ये जो वातावरण आप सुनोगे ना भक्तो, टाइम नहीं बताने का, एक बार दिल में थे जा घर जाऊ सब क्या हो दिया इन मत से, लेकिन कोई सुनाया नहीं आता, किसी का भी कितना भी पत्थर जैसा हृदय होगा वो सच में, उसका मन में कितना भी क्रोध वासना ईर्ष्या होगा, लेकिन ये निकुंज का जो वर्णन दिया गया है कि राधा रानी के वो मंगलमय पवित्र वातावरण, सुंदर हवा बह रही थी, देखो कभी आपने भी हवा है, लेकिन कोई भी हवा हो इसके तीन गुण है, वायु होता है ना, पहला गुण कि वो शीतल होना चाहिए, ठंडा, लू नहीं, ग्रीष्म ऋतु वाला। सेकेंड गुण हवा का, वायु का क्या है, वो सुगंधित होना चाहिए, सुगंध वाला, और इसके बाद भी एक गुण होना चाहिए कंपलसरी, वह ना हो तो दो गुण बेकार,
मंद वावा जोड़ू नहीं धीर समीरे यमुना
जयदेव जी ने गीत गोविंद में लिखा। आज भी यमुना के तट पर परिक्रमा करो ना, एक घाट है धीर समीर, जहां समीर मतलब हवा धीरे बहती है।
धीर समीरे यमुना तीरे,
कौन है वह? पीत वसन, पीले पीतांबर पहनकर वनमाली श्री कृष्ण आ रहे हैं और पूरी सखिया इंतजार में है, आनंद में है। और जब ऐसा वातावरण प्रेम होगा तो निश्चित है आनंद आना। हमारे इस वृंदावन की महिमा को गाया है नरोत्तम दास ठाकुर ने भी, बड़ा मधुर भजन है।
वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम,
जय वृंदावन धाम की। दिव्य रत्नों के मंदिर है, पवित्र मधुर वातावरण है। दिव्य शब्द का अर्थ है जहां जहां पर रजोगुण समोगुण सतोगुण न हो, दूसरा जहां पर भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल न हो, जो काल से और ये गुणों से परे है, जहां केवल प्रेम ही प्रेम है, जहां कभी एंड नहीं होता, आनंद की सीमा नहीं है, यही दिव्य शब्द का अर्थ। और बाजू में यमुना बह रही है,
अवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली कारे, अवृत कालिंदी नीरे राजहंस ताहे शोभे कनक कम,
कमल है और उस कमल में आठ पंखुड़ियां है, मध्य में पराग होता है ना, कमल जब खिल जाए वो आठों पंखुड़ियों में आठ सखी बैठी है और बीच में राधा रानी, क्योंकि वृंदावन धाम कमल आकार का है, ब्रह्म संहिता में लिखा है गोकुलम धामम कमलाख्यम, जैसे जगन्नाथपुरी शंख आकार का है, जैसे हमारा गिरिराज मयूर आकार का है सेफ बाहरी, ऐसे ही वृंदावन कमल आकार का। तो बस तार मध्य हेमपीठ अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका, इन आठ सखियों में आठ आठ दल मतलब पंखड़िया, उसमें प्रधान है राधा रानी वृषभानु नंदिनी सर्वकांता शिरोमणि वृंदावनेश्वरी। हम क्या बोलते हैं? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वो मध्य में है वृंदावन। नरोत्तम दास ठाकुर गुरु कृपा से देखा हुआ दृश्य बोल रहे हैं, बस ऐसा सुनेंगे ना तो भगवान की कृपा से सुनते गाते ही वो दृश्य आपके सामने आएगा और आपका प्रवेश होगा उस, यही विधि है। पहले तो श्रवण, फिर कीर्तन, और तब वो धाम भी कृपा करता है, क्योंकि भगवान से भी कृपालु भगवान का धाम है वृंदावन, जिसकी उपासना शिव शेष और शारदा और शिव करते हैं। कैलाश छोड़कर गोपेश्वर बनकर गोपी बन नाचने इसी वृंदावन में तो जाते हैं महादेव। तो बड़ा मधुर वातावरण है।
श्याम संगे सुंदरी राधिका, श्याम संगे सुंदरी राधिका,
लेकिन अभी श्याम सुंदर तो आए नहीं, तो इसने कहा ललिता देखो ना प्रियतम कहाँ है? तो विशाखा ने कहा, एक काम करो, मैं एक सखी को भेजती हूँ कि कृष्ण कहाँ गया। निकुंज अभी दंडगांव से निकले कि नहीं पता नहीं, बस अभी 12 बजे का कथा खत्म करने हजी आएवा नहीं, कहाँ है? तो एक सखी को भेजा कि जाओ तो श्याम सुंदर को देखे आओ। तो एक विशाखा की मंजरी द्रुति निकली बाहर निकुंज से शाम को ढूंढने के लिए। तो रास्ते में एक सखी मिली जिसका नाम था सेव्या, सेव्या सखी। वो चंद्रावली के ग्रुप की है, चंद्रावली एक सखी है ना, उसके ग्रुप की सेव्या। और सेव्या मिली तो उसने कहा, सेव्या सुनो, तुमने कृष्ण को देखा? तो इसने कहा, हाँ वो तो चंद्रावली के पास है। अरे हमारी राधा रानी इसका इंतजार करती और कृष्ण दूसरी सखी के पास कुंज में है। बोले मुझे वो सब नहीं मालूम, मैं अभी उसको देख के आई। अब ये सखी रिटर्न गई और विशाखा से कहती है कि कृष्ण तो दीजिए दाना, मैं किन बैठा और आप लोग यहां सिंगार करके बैठे हो। ललिता जी, विशाखा जी ने राधा रानी को कहा कि राधे जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं वो तुम्हारे प्राणनाथ तो कहीं और है। अब राधा रानी का जो ये महाभाव है वो मान में आने लगा। बोले जिसके लिए हम इतना कर रही मर रही है और वो है कि किसी और के साथ। अब ललिता विशाखा मेरा आदेश सुनो, अब वो छलिया यहां आए ना इस कुंज में, इसको एंट्री नहीं, जिसके लिए कुंज बनाया उसी को एंट्री नहीं है। और मैं उसका मुंह देखना नहीं चाहती, उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। ये प्रेम के कारण बोल रही है, अंदर तो मर रही है लेकिन प्रेम में ऐसा ही होता है। ये क्रोध भी प्रेम समुद्र की उफान है। इसलिए राधा रानी महाभाव में आ गई। अब हुआ क्या, कुछ समय के बाद कृष्ण पीताम्बर पकड़े हुए दौड़ते हुए पसीने निकालते हुए हाँ हाँ आए। तो निकुंज के बाहर ही ललिता विशाखा ने कहा, नो एंट्री, लेट हो गए प्रभु। बोले क्या हुआ, तुम्हारी सखी अंदर है? इके ही है, पर तुम जाओ। बोले क्यों? बोले मैसेज मिल गया है, कैसेट मिल गया है आपका, आपका सीन लाइव हो चुका है टेलीकास्ट। बोले क्या बात है? बोले किसी और के साथ थे, राधा रानी को पता चल चुका है, आपका नाम भी सुनना नहीं चाहती, देखना भी नहीं चाहती और हमें आदेश दिया है कि उससे ज्यादा बात भी मत करो, आप जाओ। तो भगवान श्याम सुंदर हाथ जोड़ते, ललिता विशाखा तुम तो यार अपनी हो, समझो थोड़ा। तुम्हारी सखी भले बाहर से ऐसा बोलती है लेकिन अंदर से वो मुझे चाहती है, मालूम है ना तुमको? बोले वो हमें मालूम है लेकिन अभी नहीं चाहती है, वो अब तक था, अब वो भूतकाल हो चुका। आप जाइए, पधारिए यहां से और जहां थे वहीं जाइए। बोले नहीं ललिता, राधा के बिना कन्हैया आधा है, तू तो जानती है, अगर मैं नहीं देखूंगा नहीं मिलूंगा तो जी नहीं पाऊंगा, प्लीज जाने दे। भगवान हाथ जोड़, जिसके आगे शिव ब्रह्मा हाथ जोड़ते वो कृष्ण हाथ जोड़ रहे ललिता विशाखा। लेकिन ललिता विशाखा राधा रानी ने पक्का पढ़ाया था कि नो मतलब नो, इस बार कपट नहीं चलेगा, इस बार माखन पॉलिश मस्का कुछ भी मारे कुछ नहीं चलेगा। अब भगवान बहुत अनुनय विनय किए, प्रार्थना किए, एंट्री नहीं मिला। उदास होकर ढीले मुख से, जैसे भारत हार गया और सब लोग हार रहे थे पीछे, ऐसे उदास यमुना के तट पर बालू में सो गए। पूर्णमासी ने देखा कि प्रभु परेशान है, वृंदा देवी को भेजा। वृंदा देवी है ना वृंदा महारानी, बोले जाओ इसका उपाय करो। वृंदा को देख के श्याम सुंदर कहते क्या है, ऐसे पड़े है दीवाने, न खाया न पिया न उदास, पीताम्बर का भी कहां है, बाल भी बिखरे हुए, मयूर पंख भी गिरा हुआ है। वृंदा ने कहा क्या हाल बना रखा है? बोले क्या करो, तुम्हारी सखी प्रधान हमको एंट्री नहीं दे रही है। बोले मेरे पास उपाय है, मैं तुमको राधा से मिला दूंगी। अन उपाय क्या है, है? जैसे हम लोग प्रसाद का टाइम पर खड़े हो जग जाते हैं, बिल्कुल बोलो बोलो, प्रवचन खत्म हो गया, बोलो बोलो, राधा से मिलाओगी? बोले हाँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले इस वेश में नहीं, अरे जो भी वेश बनाओ मिलाओ। क्या करे? बोले देखो बाल तो आपके बड़े हैं, उसकी मैं जटा बना देती हूँ, और पीला वस्त्र पीताम्बर आपने पहना ही है तो इसकी तो चलेगी धोती, कोई चिंता नहीं, और ऊपर तो आप कुछ पहने नहीं, सन्यासी बनना पड़ेगा, थोड़ा तिलक चेंज करती हूँ, माला बाला फूल की लगा के, ड्रेस सही है लेकिन सिंपल, लेकिन अब साधु बनना है आपको, सन्यासी बनना है। और फिर सन्यासी के बहाने, ज्योतिष के बहाने हाथ दिखाने में कुंज में आपको डाल दूंगी, फिर आपका काम। तो भगवान कृष्ण को वृंदा देवी ने क्या बना दिया, सन्यासी बना दिया, बालों को गूंथ के बांध दिया, क्योंकि ये तो छोटे छोटा रखता था अलकावृतम, लेकिन बांधा गया, पुष्प लगाया गया, तिलक लगाया गया और धोती को सन्यासी के वेश में बिल्कुल। और वृंदा देवी लेकर आई ललिता विशाखा के पास. ललिता, हमारे राज्य में वृंदावन में देखो महान साधु आए हैं, महान साधु, भगवान भी बिल्कुल स्टाइल में है साधु की. और ललिता विशाखा तो जान गई कि ये साधु बहुत पुराने हैं, अभी अभी यहां से गए थे, आ काई हुजू ने એટલે આ ધંધો એને પકડ્યો છે. કળયુગ માં આમ જ સાધુ થાય માણા, કાઈ નો વધે ને તાર કે લાવો ધોતી સાહેબ અઢી સો ની આમાં હુજી રહે એમ કેવાનો. સાધુ બનના મતલબ 250 કી ધોતી ઓર ક્યા હે, હજુ કદા વધી ગયા તને ખબર નથી. સાધુ બનના ઈઝી હે, પાખંડ લોક કર દે. ललिता ने कहा हमको पता है ये कितने साधु है. बोले सुनो अभी तुम भी क्या क्लियर कर रही हो, तुम जानती हो ना प्रिया जी का क्या हाल है, और ये इसका तो मैं हाल जा वृंदा इसकी सफाई करे. बोले तुम तुम्हारी सखी का हाल देखो, मैं इसका देख रहा हूं. अब ये सब छोड़ो, ये साधु को अंदर डालना ही. अच्छा, ललिता अंदर जाके कहती राधा रानी एक पंडित आया है, साधु है, और तुम्हारा और कृष्ण का झगड़ा बार बार होता है, और कृष्ण तुम्हारे साथ चीटिंग करते हैं, और हम लोग को दुखी होना पड़ता है. एक काम करते, ज्योति से हाथ दिखवा दे गया, झगड़ा क्या रे पूरा था, हूं नड़ेस हूं तुमने बेईमान. राधा रानी कृष्ण को ऐसे तो अंदर से चाहती है ना, तो याद करनी थी. बोले ठीक है लाओ इसको बुला. अब भगवान अंदर एंट्री तो मिल गया, साधु बने हुए, सन्यासी बने हुए. और राधा रानी के सामने जाते ही उसको थोड़ा डर लग रहा है. क्यों? क्योंकि राधा का इतना भाव प्रेम है कि आनु साधुता रे एम नहीं. इसकी साधुता चले तब ना दुनिया के सामने गुरु बनते हैं, लेकिन यहाँ तो शिष्य है. तो राधा रानी से ललिता, राधा रानी घूंघट डाले हुई है, निकुंज में बैठी है, वो किसी का मुंह नहीं देखती कृष्ण के अलावा, छूने तो देगी नहीं किसी को कृष्ण के अलावा. उसने कहा सखी एक काम करो ना, ये साधु पंडित आए हैं, इनको थोड़ा हाथ दिखा देते हैं कि क्या तकलीफ है. तो साधु क्या बोलते मालूम, कृष्ण हे चुप, मैं किसी स्त्री का हाथ नहीं छूता. ले बोलो ले. बोले मैं किसी पराई स्त्री का हाथ नहीं छूता. क्या बोलती है तुम, हाथ निकालो, मैं नहीं देखता हाथ. बोले महाराज तो फिर आप कैसे देखोगे. बोले मैं भाल देखता हूं, मैं ऐसी विद्या गुरु से सीखा हूं, हाथों की रेखा का नहीं मालूम, भाल पे जो रेखा है ना वो तो तुम्हारी सखी का थोड़ा घूंघट हटा हो, घूंघट की आड़ से दिल भर का अधूरा रहता है भाई, वो थोड़ा 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 दिखाना पड़ेगा तुमको. ऐसे कैसे पता चले मेरी रेखा, मैं तो यहाँ का ही सीखा हूँ, हाथ वाला तो सीखा नहीं. अब राधा रानी के भेजो इसको बाहर, क्योंकि मैं कृष्ण के अलावा किसी का मुंह दिखती नहीं. राधा रानी दिखाती भी नहीं किसी को, उसको मूड ही नहीं है कुछ, अंदर से उदास है, प्रीतम आए नहीं. लेकिन ललिता कहती है अरे इसको मुंह दिखाने के बाद ही तो तुझे कृष्ण का मुंह देखने मिलेगा, हूं नडई आंती तो खबर पड़ सकता ना, प्लीज दिखा दो. बहुत अनुनय विनय किया, राधा रानी मानी नहीं, तो भगवान ने कहा हाथ है आलसे मैं ट्राई करता हूं, अगर सखी को प्रॉब्लम है तो ट्राई करता हूं मैं, ऐसे रेखा तो रेखा होती है सब जगह, तो हाथ की नहीं तो कपाल कोई भी हो, लेकिन दोनों होगा तो क्लियर हो जाएगा, हमेशा का झगड़ा खत्म हो जाएगा. और मैंने सुना था आपके बारे में, राधा रानी के विषय में तो महिमा मंडित है ही है, आपका इतना ऊंचा विचार है, सब बड़ी लंबी मधुर बातें हैं. अंततः ललिता विशाखा ने राधा रानी का घूंघट हटा ही दिया, और राधा रानी का हाथ कृष्ण के हाथ में, जैसे ही हाथ पकड़ा ना, एक एक प्रेम का स्पर्श हुआ, और कृष्ण का जो जटा था ना वो खुल गया क्योंकि अब ठाकुर जी को कोई बेहोश नहीं, क्योंकि राधा मुख दिखा दे उसमें भी छू ले तो हमारे कृष्ण पानी पानी. लिखा गया है प्रबोधानंद सरस्वती के द्वारा, वेणु करान निपतित. भगवान कृष्ण जब राधा को देखते थे ना तो उसके हाथ से वेणु गिर जाती थी. वेणु करात निपतित स्खलित शिखंडी, ये जो मोर मुकुट है ना वो भी गिर जाता था. भ्रष्टस्य पीतवसनो व्रजराज सुनो, ये व्रजेंद्र नंदन सिंह कृष्ण जब राधा को देखते थे तो उसका पीताम्बर भी उसके हाथों में नहीं रहता था, पीताम्बर भी गिर जाता, प्रभु होश भूल जाते थे. राधा रानी की ये महिमा है उसके प्रेम की, कि कृष्ण भी क्या है कुछ नहीं कर पाते थे. और तब तक जैसे ही पहचान हो गई कि ये कृष्ण है, साधु बन के सन्यासी बन के चलने के लिए आए है, एक तरह तो अंदर रोष था. देखो प्रिया को अपने प्रियतम के प्रति कितना भी क्रोध हो, वो क्रोध करती है बोलती है, लेकिन जब उसको देखती है छूती है तो क्रोध अंततः किस में परिणित हो जाता है, प्रेम में ही हो जाता है. और अंततः राधा कृष्ण मिलन तो हुआ, खुश तो हो गए, लेकिन ललिता विशाखा और राधा ने मिलकर बोल दिया वहां पर कि प्रभु सन्यासी बन के हमको छलने आए हो हमारा भाव प्रेम जानने के लिए, अगले जन्म में सन्यासी खुद बनना पड़ेगा आपको। ये सन्यास लिया ना विष्णु सहस्त्र नाम में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में आया सुवर्ण वर्ण हेमांगो, सुवर्ण वर्ण का अवतार होगा विष्णु का, हेम हेम मतलब सोना, हेम जैसे अंग, और सन्यास लेंगे श्री कृष्ण जो माधुर्य के विग्रह वो क्या लेंगे। और इसलिए मीराबाई ने गाया सब जग को ये माखन चोरा नाम धरो वैरागी, हरि नाम रस में ये सन्यासी बने, तो इसके पीछे ये लीला है। और आप कभी वृंदावन जाओ इमली तला पर, तो वहां पर राधा रानी का शरद पूर्णिमा के रास के बाद वासंती रास होता है, उसमें अभिषेक किया, राधा रानी ईश्वरी है ना वृंदावन की, तो कृष्ण को पता चला कि राधा रानी का अभिषेक हो रहा है, चलो चलो, लेकिन उसको तो एंट्री नहीं, तो सब सखिया राधा रानी को स्नान अभिषेक कर रही, कीर्तन मंगल महोत्सव हो रहा है, और भगवान राधा के विरह में उस वृक्ष के नीचे बैठकर राधे 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 जप रहे, और राधे राधे जपते श्याम सुंदर क्या हो गए, गौर वर्ण के, राधा जैसा कलर था ऐसा ही कलर हो गया। तो ये इमली तला वह स्थान है योगपीठ का जहां कृष्ण गौर बने, और ये लीला वहां घटी जिससे ये निर्णय होगा कि अगले जन्म में राधा का वर्ण कलर, राधा का भाव और सन्यासी वेश धारण कृष्ण को करना पड़ेगा। और अंदर से राधा के हृदय से क्या आस्वादन करना था, राधा हृदय से कृष्ण को राधा के प्रेम की महिमा, अद्भुत बातें है ये सारी। और इसीलिए श्री गौर चंद्र, कृष्ण श्याम सुंदर है लेकिन गौर चंद्र यमुना तट पर बन गए, और तभी हुआ कि इस रस में राधा नाम, राधा जो कृष्ण प्रेम आस्वादन करती है, मैं जब चैतन्य बनूंगा तब इस रस को मैं कलयुग में लूंगा। तो भगवान चैतन्य कृष्ण है इसका प्रमाण महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम में भी है, ऐसे मन से नहीं बोला जा रहा यहां कुछ, भागवत में भी है, कई पुराणों में है, और सभी सिद्ध संतों ने, सभी आचार्यों ने, रामानुजाचार्य ने, विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय, सनत कुमार, निम्बार्क आचार्य, सबने माना है। कुछ मूर्खों की बात छोड़ दीजिए जो शास्त्र और संतों से दूर है, लेकिन सारे प्राचीन अर्वाचीन शास्त्र जगत के संतों ने एक मत से स्वीकार किया कि राधा कृष्ण जो है दोनों एक बन के कलयुग में आए, कृष्ण बनकर, श्री कृष्ण चैतन्य बनकर, और क्या लीला की, केवल संकीर्तन। तो राधा रानी की महिमा अनंत है, अपार है, और इस तरह लोभ जो था कि राधा के हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम रस का आस्वादन है, और उस लोभ के लिए कृष्ण क्या बने, श्री कृष्ण चैतन्य बन गए, और चैतन्य बनकर उन्होंने यही रस का आस्वादन किया। उस निकुंज में जब एंट्री नहीं मिल रही थी तो भगवान स्वयं राधा रानी के भाव में मांगते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो। भक्तों आज सत्संग का अंतिम दिन है, और अब हम अंतिम क्षण पर बैठे हैं जहां हमें राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करनी है कि ये जो कृष्ण प्रेम है, ये व्रज का गोपी प्रेम है, उसकी हमें भिक्षा दो। और इसी को देने के लिए राधा रानी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनी है। आप चैतन्य महाप्रभु की उपासना करोगे उसमें राधा कृष्ण दोनों की उपासना आ गई, चैतन्य को एक को रखने पर राधा कृष्ण दोनों की कृपा मिलती है, और इस कृपा के लिए कृष्ण भी तरसते हैं राधा रानी के पास, क्योंकि राधा के कृष्ण की कई कई लीलाओं में बड़ा सुंदर वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में जा रहे थे तो एक शुक मतलब क्या, पोपट, डाली से उड़ के महाप्रभु के हाथ में आ गया, तो मैं ना उधर बैठी थी, प्रभु जी अभी गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा गौरव कृष्ण बोलो, ये जो शुक था उसको, तो जो मैना और शुक दोनों चैतन्य महाप्रभु से बात कर रहे हैं, और तुरंत उड़ के शुक फिर वापस चला गया। अब चैतन्य महाप्रभु सोच रहे कि एक बार आया गौर बोल, कृष्ण बोलने को कहा तो बोला, लेकिन मैना पता नहीं क्या बोली कि ये वापस चला गया वहां। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मैं कुछ सुनता हूं ये लोग क्या बोल रहे, तो क्या बोल रहे थे मानोगे, शुक और शुक पोपट और मैना। शुक ने कहा अमार कृष्ण जगत तेरा गुरु, पोपट क्या बोला, मेरा कृष्ण जगत का गुरु है। तो मैं ना बोली अमार राधा तुम्हार गुरु रे गुरु, बोले हमारी राधा रानी तेरे गुरु की भी गुरु है। तो पोपट बोला अमार कृष्ण गोवर्धन गिरी छिलो, हमारा कृष्ण ने क्या उठाया? बोले अमार राधा शक्ति संचारिलो, ये असल जनर पावर आई थे वो शक्ति कौन है बताओ? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र का प्रमाण चैतन्य चरितामृत। बोले शक्ति तो यहां से आया। बोले आमार कृष्णर माथे मयूरेर पाखा, देखो बंगला भाषा है, क्या है हमारे कृष्ण के सर पर क्या है? एक मुकुट है जिसमें क्या है? मोरपंख। तो मैना बोली हाँ तुम्हारे कृष्ण के सर पर मुकुट है उसमें मोर का पंख भी है, लेकिन हमारे राधा रानी के चरणों में झुका हुआ है। आप कृष्ण देखिए कैसा है, मतलब अभी प्रणाम कर रहा है कि तुम्हें। बोले तुम्हारे राधा तुम्हारे कृष्ण के सर पे भले मोर मुकुट हो, लेकिन वो मोर मुकुट धारी स्वयं राधा के चरणों में, देखो तेरे कन्नवा को मुकुट झुक्यो है हमारे राधा की चरणन की और, भजन है ना ये सारे। तब इसने कहा चुप, अमार कृष्ण मदन मोहन, मदन मोहन समझते हैं आप लोग, मदन मतलब कामदेव और उसको भी मोहित कर ले उसे कहते हैं मदन मोहन। तब ये कहते अमर राधा मदन मोहनेर मोहिनी, बोले पूरी दुनिया तुम्हारे कृष्ण को देख के मोहित होता है, मदन भी मूर्छित होता है कामदेव, लेकिन वो खुद कृष्ण जब राधा को देखते हैं तो वो भी चक्कर खा के मूर्छित होके गिर जाते हैं। इसीलिए कोई बराबरी नहीं हो सकती तुम्हारी और हमारे कृष्ण की। तुम्हारे कृष्ण के पास है क्या? बस वो काली चादर है 4% की, हमारी राधा रानी की चुंदरी के करोड़ रुपये है भाई। ऐसे कितने सुंदर भाव भरे ब्रज के प्रेमी भजन है, समय नहीं गाने का, लेकिन सार रूप में आप समझिए कि राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसी रस को आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं लोभ में श्री कृष्ण चैतन्य बने। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनने के पीछे यही कारण है। और अब जो हम चैतन्य लीला में थे कि वो पिताजी का श्राद्ध करके गुरु से कृष्ण भक्ति प्रेम रस लेकर, अब चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में आए पूरा बदल गए थे। अब किसी से पंडिताई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, सबको हरे कृष्णा। मुझे आशा है कि 7 दिनों से आप भी सुधर जाओगे चैतन्य महाप्रभु की तरह। अब सबको हरे कृष्णा, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से पंडिताई नहीं, कोई अभिमान, पूरा चेंज हो गया महाप्रभु। तो सब ये श्रीवास अद्वैत सब देखते थे निमाई को, रास्ता बदल देते थे तो बोले हरे कृष्णा, प्रणाम करते थे। तो इन लोगों को लगता कि ये दूसरा नाटक है इनका कुछ, करके अमुक माना माला पकड़े तो मान्यत नहीं आ रहा काम कि आ नो ये वो रिकॉर्ड बोलते है क्या, बोले ये कुछ और नाटक। लेकिन बाद में देखा कि नहीं, ये रियलिटी। चैतन्य महाप्रभु रोते थे प्रेम में भाव में, जैसे राधा रानी कृष्ण के विरह में रोती थी ना, ऐसे चैतन्य महाप्रभु रोते थे, कीर्तन करते थे और सभी भक्तों की चरणों में गिरते थे और सब भक्त अभी खुश हो गए, बोले बस अभी अपना जमाना आएगा, क्योंकि निमाई भक्त बन गया, अब तो पूरा नवदीप नहीं पूरा भारत कृष्ण भक्ति में नाचेगा, क्योंकि चैतन्य ने कृष्ण कीर्तन किया है। और श्रीवास आंगन में महाप्रभु रात रात भर कीर्तन करते थे भक्तों के संग में, और उसी को वहां से फिर संकीर्तन चांद काजी की लीला शुरू होती है। तो बहुत सारा चैतन्य चरितामृत है भक्तों, आप लोगों ने इतना धैर्य से प्रेम से सुना इसके लिए धन्यवाद। और अपने मन को अभी आप लोग क्या कहते हैं, हमने 2 दिन शायद 4 दिन पहले सुनाया था वो घुवड़ औल, ऐसा मत बनाइए मन को, क्या बनाइए? मोर बनाइए जो कृष्ण प्रेम भक्ति में हमेशा नाचे। मोर बनी थन गट करे मन, मोर बनी थन गट करे, मोर बनी थन घाट कर मन, मोर बनी तन घाट कर मन, मोर बनी तन घाट करे मारु मन, मोर बनी तन घाट कर मन, मोर बनी तन घाट करे, मोर बनी तन घाट कर मन, मोर बनी तन घट कर जट करे मन मोर बनी तन घट करे मन मोर बनी तन घट करे मारू मन मोर बनी तन घट करे मन मोर बनी तन घट करे बस अपने मन को ये जवेरचंद मेघाणी हमारे गुजरात के महाकवि हुए जिन्होंने इस बात को बड़ी साहित्यिक ढंग से बताया है और इतना इतना जोर से ये छंद न लगे अच्छा तो थोड़ा स्लो भी है मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी
थन गाट करे
बड़ी लंबी लंबी छंद की भाषा है पूरे गौर कथा रस सात दिन जो हमने सुना सुना एक समुद्र है गौर चरित्र उसमें कुछ बिंदु सिंधु से डाले मतलब हमने सुना नहीं केवल छुआ उसको एक शुरुआत की जिसमें हमने चैतन्य महाप्रभु के तत्व को उसके स्वभाव को लीला को कुछ कुछ जानने का प्रयास किया और खास करके बाल्य लीला से पौगंड तक पहुंच गए फिर कभी राधा दामोदर ने चाहा प्रभुपाद की कृपा से आप वैष्णव भक्तों की मन में प्रभु कोई कृपा करे तो वाणी सेवा से अवसर होगा लेकिन बस चैतन्य महाप्रभु की पावन पवित्र लीलाओं को मैं यहीं विराम दूं उसके पूर्व कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी सूरत के राधा दामोदर के इस्कान के भक्तों को कि जिनके मन संकल्प मनोरथ को श्रील प्रभुपाद और राधा दामोदर ने पूरा किया विशेषकर हृदय से धन्यवाद इस ग्रेस श्रीमान भद्रनाथ प्रभु को कि उनका एक हृदय से इच्छा था और श्रीमान कार्तिक चंद्र भी कई दिनों से हमको प्रार्थना करते रहते प्रभु करना है करना है मैं हृदय से मानता हूँ मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ इसलिए मैं मना करता था लेकिन इन लोगों को एक साल से बस यही फोर्स करो 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 तो मैंने सोचा कि चलो तापी के तट पर भक्तों की कुछ वाणी से सेवा होने पर हमारी ही शुद्धि होगी कृपा मिलेगी तो अयोग्य होते हुए भी मैंने कुछ गाया विशेषकर जिस भक्त ने जो भी तन मन धन से सहयोग दिया अपना मान के आप सभी इस यज्ञ में आए प्रेम से सुना सबको श्री चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व कृपा करे शक्ति दे भक्ति दे ऐसी शुभकामना हृदय से और हमने यथा समय जो भी बोला जो भी याद आया थोड़ा गुजराती रिमिक्स कथा था हिंदी गुजराती लेकिन जीव है और जीव है त्रुटि तो होती है गलती लेकिन आप सभी वैष्णव हो कुछ अभाव शब्द निकल गया हो हृदय से आपको कष्ट लगा हो तो मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं जब आवेश होता है आनंद में गाते हैं हम फिर भी व्यक्तिगत मत लेना क्योंकि स्वप्न में भी कोई भाव नहीं है किसी के प्रति दुर्भाव का न्यूटन है मतलब ऐसे ही बोलते हैं ऐसा नहीं किसी को सुनाया जा रहा है हाँ किसी को लाग पोते कपड़ा पहरी ले तो अलग बात हम तो आनंद करते हैं और कुछ लोग सोते हैं तो इसको जगाते हैं सेवा के रूप में फिर भी मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से अपना समझकर माफ करिए और हमें भी यही आशीर्वाद भिक्षा दीजिए कि मैं गाता रहूँ जहाँ भी रहूँ भगवान के गुणों को सच बहुत अच्छा लगा आप सब भक्त हो बुद्धिमान हो सब जानते हो सब भजन करते हो और फिर भी रात रात भर 12 बजे तक आप लोग आते थे सुनते थे तो भक्तों के बीच अपनों के बीच बोलने में एक आनंद होता है सुख होता है तो ये मुझे मिला आप सूरत के भक्तों ने दिया और मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं मैं प्रार्थना करूँगा हमारे गौर नेताए से जगन्नाथ से राधा दामोदर से आप सबको खूब भक्ति दे शक्ति दे और आप इतना ही अनुग्रह रखो हम पर कि बस अभिमान न आए अपराध न हो सेवा भाव से हरि गुण गाते रहे तो मैं अपनी वाणी को यहाँ महामंत्र से विराम दूं आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
श्रील प्रभुपाद की जय।